औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगा खान एग्जाम पर अलीना अली और मेरी फ्रेंड, मेरी बहन अनुषा खोजा मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम सामईन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज का स्ट्रीम और इसके बाद आने वाली स्ट्रीम के लिए तो मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ। और टॉपिक बड़ा पेंडिंग था, आई थिंक पिछले साल मैंने अनाउंस किया था कि मैं असैसिंस पर, हशाशीन पर, सीक्रेट सोसाइटी पर प्रोग्राम करना चाहती हूँ। लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर थी और इतनी माइन्यूट माइन्यूट डिटेलिंग थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इसके साथ इंसाफ ना कर सकूं, कि अगर मैं इसको सही तरीके से प्रेजेंट ना कर सकी। अनुषा मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी सिस्टर से बात करना चाहूंगी। अनुषा कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, जितने भी सामने हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक है और हमें हमेशा इस तरह के टॉपिक्स जिसमें थोड़ा सा सुपर नेचुरल एलिमेंट हो, थोड़ा मिस्टिसिज्म हो, जादुई बातें हो, उसके अलावा जो हमारे पास्ट में, हमारे एंसेस्टर्स या हमारे तारीख में कुछ ऐसे वाकया तो जिनका आज तक सुराग ना लग सका और मिस्टीरियस एलिमेंट्स रखते हों, उसके बारे में इंसान को एक नेचुरल जो है वो क्यूरोसिटी रहती है, उसको तजस्सुस रहता है कि ये क्या था, कब था। और कुछ अरसे के बाद जब वो मिस्ट्री से पर्दा हटता है तो इंसान दंग रह जाता है कि अच्छा, इसके पीछे ये वजह थी। आज का टॉपिक भी इसी तरह था। हम लोग अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं कि कितने सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे होते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं, ऐसी कुछ हालात और वाकत हमारे जहन में आ रहे होते हैं या हमारे सामने आ रहे होते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या होगा। एक्साइटमेंट से भरपूर आज की स्ट्रीम है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैंने तैयार की है, उसको देखने के बाद इंशाल्लाह आज ओपन स्टेज रहेगा, जितने भी कॉलर्स आएंगे सबको जगह दी जाएगी, सबसे राय ली जाएगी। और जाहिर सी बात है ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि रूमर्स भी इंक्लूड हैं, अनसर्टन न्यूजेस भी इंक्लूडेड हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं और कुछ क्यास अराइयां भी हैं। लेकिन ऑलवेज जब कहते हैं ना कि अगर कहीं पर खुशबू उठ रही है तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं खाना तो पक रहा होगा, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है जिसकी वजह से ये बारे बातें हो रही होती हैं। दज्जाल, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, नाइट टेम्पलर्स, इसके अलावा कितनी सारी सीक्रेट सोसाइटीज आज भी अपना सिम्बोलिज्म हमारे सामने ला रही होती हैं। हम जज नहीं कर पा रहे होते, हमने अपने इंडिपेंडेंट रिसर्चेस तो की होती है। जो लोग किसी तह तक पहुंच जाते हैं उनको अचानक से गायब करवा दिया जाता है। कुछ आज का इसी तरह का टॉपिक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आगा खान निजाम चैनल तो है ही हमारा कि हम इस पर आगा खानी मजहब से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइलिज्म से इस्लाम की तरफ आए तो हमसे अच्छी नॉलेज कौन दे सकता है इस मजहब के बारे में। इसके साथ साथ हमारे जो दो चैनल्स हैं, अनुषा खोजा का चैनल है, माशाल्लाह वहां पर भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है ईमान यूनियन के बैनर के अंदर, उसके अम्ब्रेला के अंदर। मेरा चैनल, दो चैनल है वहां पर, लाइव विद अलीना अली एंड अलीना अली चैनल, दो चैनल्स हैं वहां पर, उसको भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग वहां पर भी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मिस ना करें। क्योंकि मुस्लिम उम्मा जो है वो कहीं पर भी हो, किसी भी फ्रंट पर काम कर रही हो, सपोर्ट तो आप सबकी चाहिए, सपोर्ट आपकी दुआएं, शेयरिंग, जिनके लिए ये प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं उन तक पहुंचाने की बात होती है। खैर, जो हमें पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे उनको प्रेजेंटेशन के बाद कॉलर एज अ कॉलर ऐड किया जाएगा। तो विदाउट फर्दर डू मैं चाहूंगी कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन पेश कर सकूं और स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर कर देती हूं। अल्लाह करे अगर आज अगर ये थोड़ी सी ग्लिच करे तो आई हैव अ सेकंड ऑप्शन, तो मैं उसको प्रोसीड करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री असैसिंस पर, रियल सीक्रेट सोसाइटीज और इसका कैसे लिंक है आगा खान फाउंडेशन से और आगा खान की जो है वो जो चल रही है उनकी वेंचर्स उसके साथ। जब वीडियो चलेगी तो अनुषा प्लीज कमेंट्स मत दिखाइए ताकि वीडियो इंटरप्ट ना हो। तो बहुत शुक्रिया। सो दिस इज अवर वीडियो। 2000 साल के आखिरी आयाम से लेके आज तक सोशल मीडिया पर कई ऐसी न्यूज सामने आई हैं जहां मिस्टीरियसली यानी पुरसरार तरीके से कई हाई प्रोफाइल शख्सियत की अचानक से मौत सामने आई, जिनको सीक्रेट सोसाइटीज के साथ लिंक किया जाता रहा। सवाल ये बनता है कि अब भी कोई सुपर नेचुरल मिस्टिक तंजीम एक्टिव है जैसा कि 11th सेंचुरी सीरिया में एक्टिव थी। हशाशिन्स एक जमाने में दुनिया के सबसे ताकतवर लेकिन ब्रूटल सीक्रेट सोसाइटी समझी जाती थी, जो अपने टारगेट को पता लगाने और उसको खत्म करने के लिए जाने जाते थे, चाहे उनका टारगेट कितना ही सिक्योरिटी और सेफ्टी में हो। असल में हशाशिन्स और मुतअद्दिद सीक्रेट सोसाइटीज के बीच में राब्ते की अफर्मेशन की जा चुकी है और कई हाई प्रोफाइल केसेस में इनको ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लेकिन 1258 तक मंगोल सल्तनत ने इन नजारी इस्माइली असैसिन्स को वर्चुअली इस जमीन से मिटा दिया था। हाँ, वर्चुअली इशारा काफी है। तारीख बताती है कि 13th सेंचुरी के आखिर तक ये खुफिया असैसिन्स का ग्रोह खत्म हो चुका था। पर क्या तारीख की किताबें गलत नहीं हो सकती? क्या ये चरस चबाने वाले कातिल आज तक कायम नहीं? क्या कभी इस ग्रोह में जो जादू और सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल आम था, और अगर आज भी ये असैसिन्स 21st सेंचुरी में मौजूद हैं, तो क्या इनका आज की सीक्रेट सोसाइटी के साथ सेम एजेंडा है, या फिर ये एजेंडा इस्लाम दुश्मन और खौफनाक है, या फिर ये असैसिन्स बिल्कुल ही नए तरीके से हमारे बीच एक नया मखोटा पहनकर एक अलग रंग पेश करते नजर आते हैं? जवाब आप देंगे आज के एपिसोड मुकम्मल सुनने के बाद। द राइज ऑफ असैसिन्स, चैप्टर 1। हमने तारीख में अब तक कई हाई प्रोफाइल अफराद को इस दुनिया से मिस्टीरियसली जाते देखा, जिनमें सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस वगैरह शामिल हैं। शुरुआत में तो यही समझा जाता रहा कि शायद ये तमाम अफराद की मौत खुदकुशी है या फिर एक्सीडेंट्स, लेकिन एविडेंसेस से मालूम होता रहा कि कोई बड़ा पपेट मास्टर है जो अपनी शैतानी खेल खेल रहा है, जो कि किसी पेड असैसिन से ये काम बड़ी सफाई से करवा रहा है। मेरिवल और रेनेसांस पीरियड, जो कि रफली समझा जाए तो 17वीं सेंचुरी में, एक ऐसा ग्रोह सामने आया जिसने पूरी दुनिया में अपनी दहशत बनाई। फर्स्ट मिलेनियम एडी में नजारी इस्माइली मजहब के छाओं में इस खुफिया ग्रोह ने अपने आप को फॉर्म किया। नजारी इस्माइली वो मजहब है जिसको मेन स्ट्रीम के मानने वाले हेरेटिक्स मानते हैं। ये नजारी इस्माइली वो ग्रोह है जो कि इस्लाम के नाम पर खुद की बातिल बातनी तालीमात को अपने पेड मिशनरीज, जिनको दाई कहा जाता है, आम आवाम तक इस्लाम के खिलाफ में लपेट कर फैलाते रहे। और जब इनकी ताकत और तादाद बढ़ने लगी तो इसी नजारी इस्माइली मजहब के लीडर्स ने खुफिया लोगों का एक ग्रोह बनाया जिनको आज के मॉडर्न दौर में दी असैसिन्स कहा जाता है। वक्त आ गया जब हसन बिन सबा नामी इस्माइली नजारी दाई पावर में आया और उसने इस असैसिन यानी फिदाइन के ग्रोह को एक नया तरीका और ट्रेनिंग देकर दुनिया में एक मकाम दिलाया जो कि खौफ और दहशत की अलामत बना। अगर इन्हीं नजारी इस्माइलियों को दुनिया का पहला दहशतगर्द कहा जाए तो गलत ना होगा। इन फिदाइन यानी असैसिन्स को मुनज्जम यानी फॉर्म करने से पहले हसन बिन सबा एक अजीम इस्माइली दाई की हैसियत से नुमाया हुआ। ईरान के अलबोर्स माउंटेन में रहने वाला हसन बिन सबा ईरानियन सिटी रे में थियोलॉजी की तालीम हासिल करता नजर आया और 17 साल की उम्र में हसन बिन सबा ने इस्माइली निजारी मजहब अपनाया। हसन बिन सबा इस्माइली मजहब का कट्टर मानने वाला बना और इस्माइली ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा। 1076 में वो इजिप्ट गया और वहां मजीद दीनी तालीम की ट्रेनिंग ली। 3 साल बाद जब वो ईरान वापस आया तो उसको कई जगह इस्माइली निजारी मजहब के मुफाद में डिफरेंट लोकेशन पर भेजा गया। बहुत से मुसलमानों को कम ही अरसे में इस हसन बिन सबा ने नजारी इस्माइली बनाया और 1090 में किला अलामूत पर कब्जा कर लिया इसने, जहां उसने एक ऐसा इलीट स्क्वाड बनाया डाला जिनको फिदाइन कहा जाता था, असैसिन्स या हशाशीन्स। 2 साल के अरसे में कातिल फिदाइन के सर पर कई तारीखी शख्सियात का खून लगा। ये हशाशीन्स मुसलमान और क्रिश्चियन लीडर्स के कातिल बने, जिसमें फातिमी मिनिस्टर अल अब्दल 1122, इब्ने अल खशब अलीपो के 1124 में, रेमंड द सेकंड जो कि काउंट ऑफ ट्रिपोली थे 1152 में, कॉनराड ऑफ माउंट फराद किंग ऑफ जेरूसलम 1192 के साथ साथ प्रिंस एडवर्ड 1271 में, जिनको एक खूनी जहरीले चाकू से मारा गया इन्हीं असैसिन्स के थ्रू। यह हशाशिन्स यानी इस्माइली फिदाइन का एक ऐसा ग्रोह था जो ये मानता था कि इनका लीडर गैबी इल्म के साथ साथ सुपर नेचुरल पावर्स रखता है और जिसको पूरा पूरा हक है कि वो अपनी हुकूमत कर सके इन फिदाइन पर। ज्यादातर मुसलमान इस लफ्ज फिदाइन से वाकिफ नहीं, जिसका मतलब अपनी रजामंदी से जान देने वाले, अगर रफली ट्रांसलेट किया जाए तो। और हशाशिन्स के लिए ये माना जाता है कि यह लफ्ज हशीश नामी नशावर ड्रग से निकला है। अब ये नाम भी इसी वजह से पड़ा कि तारीख मान में लिखा जाता है कि हसन बिन सबा अपने कातिल फिदाइन का ब्रेन वॉश करने के लिए इसी ड्रग का इस्तेमाल करता था। मार्को पोलो ने अपनी किताब में उस लड़के का भी जिक्र किया जिसको हशीश पिलाकर एक ऐसे बाग में ले जाया गया जहां दूध की नहरें बहती थी और खूबसूरत औरतें दिखलाई गईं। और बाद में जब वो लड़का होश में आया तो उसे कहा गया कि अगर तुम फिदाई बन जाओ तो हमेश हमेश के लिए उसी जन्नत में भिजवा दिए जाओगे। अब ऐसा खतरनाक तरीका अख्तियार किया जाए तो दुनिया में खौफ फैलना ही था उस वक्त। हिस्ट्री में लिखा है कि 14 सेंचुरी तक ये ग्रो नहीं रहा, लेकिन क्या तारीख की किताबें गलत नहीं हो सकती? और ऐसा मुमकिन क्यों नहीं कि आज ये खुफिया ग्रो खुफिया तरीके से अपने टारगेट्स को निशाना बना रहा हो? हसन का सबसे पहला शिकार, जो कि असैसिन्स यानी इस्माइली फिदाइन के जरिए मरवाया गया, वो पर्शियन हाई रैंकिंग मिनिस्टर अबू अली हसन अली तूसी थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये आपको बता दें कि अब हसन नाम के कई कैरेक्टर सामने आएंगे और उनको समझने में जरा दिक्कत पेश आ सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सो बी विद अस। 1092 अक्टूबर की सुबह 10 रमजान में हसन इब्ने सबा ने अपने एक फिदाई को एक सूफी बुजुर्ग के रूप में अली तूसी के हैवीली गार्डेड किले में भेजा और तूसी को बड़ी मकारी से जहर आलू चाकू से कत्ल करवा दिया। इस सफाक और खतरनाक तरीके से घुसकर कत्ल के वाके के बाद लोग हसन के नाम से डरने लगे और इस कातिल फिदाइन हशाशीन का ये ग्रोह 11 सेंचुरी में अपने खूनी कारनामों की वजह से शोहरत पाने लगा। जबकि हसन बिन सबा 1124 के बाद मर गया एक बीमारी की वजह से, लेकिन इस कातिल ग्रोह को फिर से बातनियत के नाम पर रीग्रुप किया गया। चैप्टर 2, द हेरेटिक्स एंड द सुपरनैचुरल। 1162 में अली हसन यानी के हसन द सेकंड, जिसको इस्माइली हसन अला जिक्र सलाम के नाम से जानते हैं, اس خفیہ فدائی حشاشین کا اگلا بانی بنے جس کے نئے طریقے نے اس گروہ کو نیا پاور اور اثر و رسوخ دلوایا. 1967 میں برنارڈ لوئس نے اپنی کتاب دی اسیسنز میں لکھا کہ 1163 کے رمضان کے میٹ میں حسن دو نے اپنے فالوورز کو جمع کیا اور ایک ایسا اعلان کروایا جو کہ جن انسان اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا. اور اس نے کیا کہا کہ میں حسن مہدی علیہ السلام جو کہ قیامت کے قریب آنے والے ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے فدائین اور میں اب کسی بھی اسلامی بندش کے پابند نہیں, شریعت کی پابندیاں اب اٹھا لی گئی ہیں اور قیامت آ چکی ہے. اور حسن نے یہ بھی کہا کہ جس کو جیسا دل کرے اس طریقے سے دین پر چلے جب تک اس کا عمل مذہب پر عمل کرنے کی نیت سے ہو. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی وقت حسن اللہ ذکر سلام یعنی حسن دو نے تمام اسماعیلیوں کا روزہ توڑوایا جو کہ 17 رمضان تھا, اور اس 17 رمضان میں تمام اسماعیلیوں سے ان کا روزہ توڑوا کر ان سے حج نماز اور روزے جیسی نعمت کو چھین لیا تھا, اور اسی وجہ سے اس مذہب کا نام باطنیت پڑا اور اسماعیلی اپنے آپ کو باطنی اسماعیلی کہتے ہیں. جہاں جہاں پرشیا میں حکومت تھی حسن نے اپنا سپہ سالار راشد الدین سنان کو بنایا, خاص کر سیریا اسی کے ہاتھ میں دے دیا. یہ وہ آدمی تھا جس کا نام اولڈ مین آف دا ماؤنٹین پڑا جو کہ پہلے سے ہی مشہور تھا حسن بن سبا کے حوالے سے مارکو پولو کی کتاب میں. اس قاتل فدائین کے چیف اساسن راشد الدین کو پہلے حسن دا سیکنڈ نے سیریا کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ وہاں جا کر اس کا نیا اسلام متعارف کرائے اور اساسنز کے مشن کو بھی بڑھا سکے. راشد نے پہلا اپنا ہیڈ کوارٹر الکہ نامی محل کو بنایا اور بعد میں پھر میسف کے قلعے کو جو کہ ان کا کی لوکیشن بنا. راشد کی طاقت بڑھ چکی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی سپر نیچرل پاورز کی بھی باتیں زبانوں پر عام ہو گئی. کئی سورسز سے معلوم پڑتا ہے کہ راشد الکیمی کا ماہر تھا جو کہ ایک فارم آف میجک ہے, اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ راشد اپنے اساسنز کو کئی قسم کے جادو سکھایا کرتا تھا جس میں ایسٹرو پروجیکشن یعنی خود ایک جگہ ہونا اور خود کو کہیں اور ظاہر کرنا, ساتھ ساتھ مائنڈ کنٹرول یعنی کہ سائیکک پاورز کا بھی علم اس نے اپنے فدائین کو دیا. بات خالی ایسٹرو پروجیکشن یا مائنڈ کنٹرول تک رہتی تو سمجھ آتا, پر ابو فراز جو کہ ایک اسماعیلی آتھر رہ چکا ہے 14th سینچری کا, اس نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ راشد کو یہ بھی پاور حاصل ہو چکا تھا کہ وہ دنیا میں ہونے والے واقعات تک کو بھی مینیپولیٹ کر لیتا تھا. ابو فراز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اولڈ مین آف ماؤنٹین راشد الدین سنان جب ڈسگائز میں سیریا پہنچا تو اس کے ساتھیوں نے یہ نوٹس کیا کہ ان کے لیڈر راشد کا تو کوئی سایہ ہی نہیں ہے. اولڈ مین نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ وہ اس کے سائے کے متعلق کسی کو نہ بتائیں, لیکن کہاں ایسی باتیں رکتی ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے سارے نظاری اسماعیلیوں میں یہ ایمان آتا گیا کہ ان کا لیڈر خدا داد طاقتوں کا مالک ہے اور وہ جیسا چاہے عطا کر سکتا ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے, اور ایسی اطاعت جیسی کی خدا کی اطاعت ہوتی ہے. پری کوگنیشن, فیوچر ایونٹس کو دیکھ لینا, مائنڈ ریڈنگ اور سب سے زیادہ مائنڈ کنٹرول جیسا پاور کا حامل لیڈر کی ہر بات فدائین آنکھیں بند کر کے مانتے اور اس پر لبیک کہتے, اب چاہے وہ قتل کرنا ہوتا یا پھر اپنی جان دے دینا. ایسے واقعات موجود ہیں جہاں یہ ساری طاقتیں استعمال کر کے راشد سنان اپنے ہی فالوورز کے مائنڈ کنٹرول کر کے اپنے قلعے میں آنے والے مہمانوں کو ہراساں کرتا. کتابوں میں درج ہے کہ راشد کچھ ایسے الفاظ کہتا اپنے فدائین کے کانوں میں کہ اس کو سننے کے فوراً بعد نوجوان اساسن خود ہی قلعے کی چھت سے نیچے چھلانگ مار لیتے اور اپنی جان دے دیتے. آف کورس یہ خودکشیاں سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی وجہ ہی تھی. سب سے فینٹاسٹیکل واقعہ تو تب تھا جب صلاح الدین کے متعلق لکھا گیا تاریخ میں کہ 1176 میں صلاح الدین نے نظاری اسماعیلیوں کو ان کی اسلام دشمن تعلیمات کی بنا پر ختم کر دیا تھا, اور جب وقت آیا کہ صلاح الدین علامود پر حملہ کرتا جہاں راشد چھپا رہتا تھا, صلاح الدین اچانک سے اپنا ارادہ ترک کر دیا. کہتے ہیں کہ صلاح الدین نے اپنے کچھ گارڈز کو ماؤنٹین پر بھیجا کہ وہ راشد کو قتل کر دیں, لیکن گارڈز جیسے ہی اپنا کام کرتے کامیاب ہونے والے تھے کہ ان کو کسی غیر انسانی طاقت نے روک لیا, اور وہ گارڈز گھبرا کر ڈر کر الٹے پیر اس قلعے سے واپس بھاگے. اور اس کے بعد سیریز آف انسیڈنٹ ہونے لگے کہ جہاں پر صلاح الدین کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی. صلاح الدین جس نے دشمنوں کے دلوں میں خوف بنا رکھا تھا اچانک سے اپنے ہی ڈراؤنے خوابوں سے ڈر کر اٹھ جاتا. صلاح الدین نے اپنے طبیب کو بتایا کہ اس کے خواب ایسے سچے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ وہ خواب نہیں حقیقت ہوں, لیکن ان خوابوں نے تھمنے کا نام نہ لیا, اور جس رات آخری خواب آیا اس رات صلاح الدین کے کمرے میں ایک گرما گرم بیک کیک اور زہریلا خنجر دیکھ کر صلاح الدین یہ بات جان گیا تھا کہ دشمن سامنے ہے تو اس کو ہرایا جا سکتا ہے, لیکن جو دماغ میں گھس کر حملہ کرے اس کے ساتھ لڑنا لا حاصل ہے. اور بس اسی رات سے کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین نے اپنی وہ جنگ जो उसने बातनी इस्माइलियों के खिलाफ कर रखी थी उसको सुलह में तब्दील कर दिया और हसन दी सेकंड और हशाशीन को आजादी दे दी। यही वजह है कि इन कातिल गुरु ने लंबा अरसा अपना खौफ इस कॉन्टिनेंट में बनाकर रखा। अब राशिद पहले सिर्फ अपने दुश्मनों के दिमागों में घुस जाया करता था, लेकिन सलाहुद्दीन के साथ मुहायदा करने के बाद वो अपने दुश्मनों के घरों तक घुसने पर केपेबल हो चुका था और राशिद की ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता गया। लेकिन मंगोलों को मंजूर न था कि उनके अलावा भी कोई और सफाक कातिलों का लेबल अपने ऊपर लगा सके। चैप्टर 3, मंगोल वर्सेस द असैसिंस। वॉरलॉर्ड गयूब खान के दौरे हुकूमत में जब उसने ये इरादा कर लिया कि वो अपनी हुकूमत वेस्टर्न एशिया से आगे एक्सपेंड करें, तब उसके लिए जरूरी हो गया था कि वो नजारी इस्माइलियों को सीरिया और ईरान से मार भगाए। मौत के खौफ से नजारी इस्माइली कुछ अरसे के लिए मेन स्ट्रीम इस्लाम की तरफ वापस पलटे और अब्बासी खिलाफत के हुक्म के नीचे शामिल हो गए थे, ताकि वो यूरोपियन मोनार्क यानी इंग्लैंड और फ्रांस को मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिटी इतिहाद की अपील कर सकें। लेकिन ये वेंचर बहुत जल्द फेल हो गया था। मंगोलों ने पहला हमला 1253 में कर दिया नजारी इस्माइलियों पर और 13 सेंचुरी तक नजारियों की रेजिस्टेंस यानी हशाशींस कम्प्लीटली कर दिए गए। हिस्ट्री के मुताबिक मंगोलों ने कम्प्लीटली खत्म कर दिया था इस कातिल ग्रोह को, लेकिन इसके मानने वाले भागे मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, एशिया की तरफ। हिस्टोरियंस को यकीन नहीं था कि ये नजारी इस्माइली मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं या भाग गए हैं। लेकिन हकीकत में 300 साल बाद इस कातिल हशाशींस के जानशीनों में से एक ओरिजिनल मेंबर सामने आया और उसके बाद यकायक अजीब असैसिनेशन सामने आई। सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर उस दौर का ममलूक डायनेस्टी का लीडर था। सवाल ये पैदा होता है कि ये कातिल ग्रोह फिदाइन का कितना अरसा सर्वाइवल रहा और क्या ये आज भी मौजूद हैं? 18वीं सदी में नजारी इस्माइलियों के नाम से मंसूब कई असैसिनेशन में नामजद नजारियों के लीडर आगा खान को खिताब मिला शाह ऑफ ईरान की तरफ से 1818 में। लेकिन इस कातिल ग्रोह के इस लीडर ने ईरान के शाह की बेटी से शादी की और शाह को असैसिन के हाथों कत्ल करवा दिया और वहां से भाग निकला। 18वीं सदी में आगा खान के ईरान से भागने के बाद एशियन कॉन्टिनेंट में रेफ्यूज हासिल किया और अब यही ग्रो क्लेम करता है कि आज के दौर में 12 से 15 मिलियन फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड इनके मौजूद हैं। इनके मौजूदा लीडर हार्वर्ड एजुकेटेड करीम आगा खान हैं, जो कि 1936 में पैदा हुए। 20th सेंचुरी में इस्माइली मजहब के लीडर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपना पिछला पन्ना दोबारा से रिब्रांड करके एक नया लेबल और एक नया लुक वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट करेंगे। आगा खान 3 ने इस्माइलियों की हिस्ट्री को दोबारा से लिखवाया अपने स्कॉलर्स के जरिए, जहां हशाशीन के उनके साथ ताल्लुक को एक दूसरे नजरिए के साथ पेश किया गया, जहां जालिम से ज्यादा उनको मजलूमियत के अंदर दिखाया गया। फिर इस्माइली मजहब को आर्ट, साइंस, आर्किटेक्ट वगैरह के लिफाफे में लपेट कर एक नया चेहरा मुतारिफ कराया। आज इस्माइली लीडर्स बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट के वेंचर्स आपको करते नजर आएंगे। यहां तक कि ग्लोबली हेरिटेज साइट्स को भी प्रिजर्व करने के काम में लगे हुए हैं आगा खान। लेकिन बड़ी मिकदार में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है आगा खान फाउंडेशन ओल्ड मैन ऑफ माउंटेन के किले यानी हसन बिन सबा के किले को प्रिजर्व करने में, पर मजे की बात यह है कि साथ साथ सलाउद्दीन के भी महल को प्रिजर्व करने में आगा खान फाउंडेशन लगी हुई है, जबकि यही सलाउद्दीन नजारी इस्माइलियों का उस दौर का सबसे बड़ा दुश्मन था। किस्मत कहें या किस्मत का खेल या फिर कोई प्लान। आगे बढ़ते हैं। 1967 में आगा खान फाउंडेशन की फॉर्मेशन पॉजिटिव रीब्रांडिंग भी इस मजहब के मानने वालों को उनके माजी से बचाना सकी, क्योंकि इंटरनेट के दौर में इंफॉर्मेशन हासिल करना और किसी भी कल्ट या ग्रोह का पास्ट मालूम करना सब फिंगर टिप्स पर है। हशाशींस का 11, 12 और 13वीं सेंचुरी में जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनी उनका साथ लिंक बताया गया, जैसा कि हिस्ट्री में आता है कि क्रूसेड्स के वक्त यही हशाशींस कभी क्रूसेडर्स के साथ और कभी इनके खिलाफ लड़ते आए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एजेंडा। और यहां तक डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि क्रूसेडर्स और हशाशींस के बीच में अलायंस भी हुआ और ये क्रूसेडर्स यूरोप वापस आए और असैसिंस के इस सिस्टम पर अमल करते हुए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया, जिनमें नाइट टेम्पलर्स, फ्री मेसन्स, जिसके खुद सुल्तान आगा खान मेंबर्स रह चुके हैं, और उसके अलावा अली सलमान खान की तो बात ही क्या की जाए, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मुखबरी करके अपनी वफादारी साबित की थी। इस तरह रोसिक्रूशंस और इल्यूमिनाटी भी इसी सिस्टम के अंदर फॉर्म हुई हैं, जबकि ओरिजिनल हिस्टोरिकल बेवेरियन इल्यूमिनाटी कुछ ज्यादा ही पावर में आने लगी तो बाकी ऑर्डर्स ने यानी बाकी सीक्रेट सोसाइटीज ने 1785 में उसे खत्म करवा दिया। लेकिन असल में मॉडर्न इल्यूमिनाटी नाइट टेम्पलर्स और हशाशीन के अलायंस के नतीजे में ही सामने आई। ये रिग्रुपिंग जो तमाम सीक्रेट सैटेनिक कल्ट्स के बीच हुई, इसे ही तो हम सीक्रेट सोसाइटीज कहते हैं, जो कि हमारे लिए पॉलिसीज बना रहे होते हैं आजकल की दुनिया में अपने फायदे के लिए। मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स का मानना है कि ये जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज जैसे कि नाइट टेम्पलर्स, फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी, रोसिक्रूशंस, सब उस वक्त 16 सेंचुरी में बनाई गई कि जब हर्षाशींस दोबारा से पर्दे पे सामने आए। बैक टू रोशनाया मूवमेंट, ये तंजीम अफगानिस्तान में फॉर्म हुई और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड तंजीम थी। इसकी भी आइडियोलॉजी मिस्टिसिज्म पर बेस्ड थी जैसा कि हर्षाशींस की, लेकिन इस बार इस ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन था पीस एंड हार्मोनी। लेकिन इतना खूबसूरत स्लोगन होने के बावजूद इस तंजीम को खत्म क्यों किया गया? खत्म किया भी गया या सिर्फ किताब की हद तक? एडवर्ड बर्मन अपनी किताब दी असैसिंस में लिखते हैं कि आगा खान के फॉलोअर्स उन्हें हर साल 75 मिलियन यूरोस देते हैं, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कहां लगता है, किस मकसद में लगता है, आज तक पता नहीं। रॉबर्ट एंटन 17 सेंचुरी में लिखते हैं कि इल्यूमिनेटेड वंस नामी तंजीम स्पेन में फॉर्म की गई, जहां मिस्टिकल वेरिएशन के साथ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की नई शक्ल मिलाकर बताई गई। अगर हम इस्माइलियों की तालीमात को आज भी देखें तो हमें उसकी झलक दिखती है। पहले असैसिंस अपना खौफ रूमर्स के जरिए फैलाते थे, आज ये काम सोशल मीडिया कर रही है। असैसिन, हर्षाशींस, नाइट टेम्पलर्स पर्दे पर सामने नहीं, पर हमको हर जगह पैटर्न सिंबल्स दिखाई देते हैं। जिस तरह से पैंडेमिक में वर्ल्ड पॉलिसीज हमारे लिए बनाई गई, वी कैन क्लियरली सी द पैटर्न। क्या हम अपने सरों पर टिन फॉइल पहने हुए हैं? क्या हम नहीं जानते कि हर साल 3 बिलियन यूरो ज़कात, डोनेशन और वॉलंटरी बेसिस पर हासिल करने वाले इस्माइली लीडर्स उन पैसों को चाइल्ड बिल्डिंग, रफाई इदारे या एजुकेशन पर लगाकर जस्टिफाई कर देंगे, और वो भी सब फिर से कमाई का जरिया बनते हैं? क्यों एक अंग्रेज मलिका आगा खान की वालदा को लेडी का खिताब देती है? क्या कारनामे किए जिनकी बिना पर क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने एक इस्माइली औरत को लेडी का खिताब दे डाला? क्यों आगा खान को सर का खिताब दिया गया? क्यों आज तक आगा खान और उसकी औलाद मलिका के आगे सर झुकाती है? क्यों ये जानने के बाद भी कि आगा खान ना तो दीनदार है ना ईमानदार, फिर भी इस्माइलियों की जमात अपने खून पसीने के कमाए हुए पैसे आगा खान को मजीद अमीर तरीन बनाने में लगा रही है? क्यों आगा खान फाउंडेशन अपने अवार्ड्स का नाम इल्यूमिनेट रखते हैं? क्यों आगा खान फ्री मेसन्स का बैच पहनकर मलिका के सामने खड़े होते हैं? क्यों सुल्तान आगा खान का नाम फ्री मेसन्स की वेबसाइट में एज अ मेंबर आज भी दर्ज है? इल्यूमिनाटी को दज्जाल की तंजीम कहा जाता है, जो कि उसके जहूर की तैयारी कर रही है। दज्जाल कभी भी मदीने में दाखिल नहीं हो सकता, तमाम तर पैसा और पावर रखने के बावजूद भी। आज तक आगा खान भी नहीं दाखिल हो सका। फैसला आप पर, फैसला आप पर। आगा खान आज तक ना मदीने शरीफ जा सका, ना मक्का शरीफ पहुंच सका, जिस तरह दज्जाल नहीं जा सकेगा। सवाल आपके लिए, जवाब आपके जहनों में, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। अनुषा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा क्या कहेंगी, कुछ समझ आया प्रेजेंटेशन?
जी सिस्टर, आपने तो पूरा इनकी हिस्ट्री को खोल कर सामने बयान कर दिया है। और अभी वाकई अगर कोई वाकई जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बाकी होगा ना, तो वो सोचेगा जरूर कि अब जो है, अब क्या, अब कितना पूजेंगे ये लोग। इतना कुछ आपने एक्सप्लोर कर दिया है, इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो वो वाकई अंधा ही कहलाएगा।
बिल्कुल ठीक। चलिए, हाँ, मैंने लिंक दे दिया है ज्वाइन करने के लिए। होप कमर समद भाई, आपको मैंने देखा था, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आमिर भाई का हमारे पास कमेंट आया हुआ है, अगर आमिर भाई के पास टाइम हो तो इंशाल्लाह हम ज्वाइन करेंगे। और थैंक्स कि आप सुन रहे थे। गोल मकई हमारी सिस्टर सुन रही थी। सीक्रेट सोसाइटीज हमारे लिए एजेंडाज प्लान कर रही है, हमारे वर्ल्ड को रन करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज को वो तरतीब देते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाई हुक और क्रूक जो है वो हमें डिफरेंट तरीके से भेड़ बकरियां समझ कर चलाया जाता है। आगा खान की लास्ट में मैंने दिखाया कि आगा खान थ्री जो थे वो फ्री मेसन्स के मेंबर रह चुके, फ्री मेसन सोसाइटी के मेंबर थे। दो दफा उनकी खिदमत के लिए उनको सर का खिताब, प्रिंस का खिताब, और जिस तरह के उनके ताल्लुकात हैं जो इंग्लैंड के मोनार्क्स हैं और इंग्लैंड की जो रॉयल्टी है उसके साथ, आगा खान खुद भी जो है वो अपनी दोस्तियां बताते हैं। वर्ल्ड वॉर थ्री के टाइम पे सुल्तान आगा खान थ्री स्पेशली नाजीस के साथ, यानी हिटलर के हामियों के साथ और नाजीस के साथ जो है वो उठते बैठते शराब पीते हुए नजर आए। इतना कुछ जानने के बाद भी इस्माइली आगा खानी जमात कैसे ये मान सकती है कि इनका इमाम नूरुल्लाह है, इनका इमाम जो है वो खुदादाद ताकतों का मालिक है, इनके इमाम को जो है वो शरीयत बदलने का हक है, कुरान को नल एंड वॉइड नाउजुबिला करने का हक है? इस्माइली आगा खानियों से सवाल है कि आगा खान जिस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस है, ना तो ये इस्लामिक है और ना ये शरीयत है, लेकिन कभी हमने उनको इस्लामिक पर्सपेक्टिव या इस्लामिक तरीकेकार से भी कोई अमल करते नहीं देखा। क्यों इतनी मोटी पट्टी बांध रखी है? क्या मिलता है आगा खानी बनके? आज का सवाल हमारा हम पेश करेंगे। काफी सारे लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक पे भी, माशाल्लाह काफी लोग हमें देख रहे हैं। तो फेसबुक पर इस्माइली सुन तो रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, रीजन क्या है? क्या इसी तरह आंखें बंद करके अपने चरवाहे के पीछे चलते रहना है या दिमाग भी चलाना है? जी अनुषा,
मुझे तो इनकी ये समझ नहीं आती, ये जो अकले कुल बोलते हैं इसको, ये हर चीज से मांगते हैं, तो फिर जब इनका इमाम खुद जो बीमार हो जाता है, खुद जो है वो हॉस्पिटलाइज था अभी लास्ट डेज में भी, तो फिर वो कैसे इनको सेहत देता होगा? थोड़ी थोड़ी तो आंखें खोले इतना कुछ। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आगा खानिज्म पे जितना जितना मटेरियल है हमारा, जितना रिसर्च आपकी है, जब तक मैं इस्माइली मजहब में थी ना, मुझे इतना कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने जो है हिदायत दी, हम रिवर्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हमने ठान ली कि अब जो हम रिवर्ट हुए हैं तो हमें अपने इस्माइली भाई बहनों को भी इसकी नॉलेज देनी चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है हमें बताना चाहिए। तो उसकी रिसर्च करने के बाद इतनी सारी चीजें हमें सामने आई, वरना तब तक एक एक वो था कि ठीक है एक इंसान की इबादत करना शिर्क है, अब पता चला है इतना कुछ आपने उसको खोल के बयान कर दिया है, तो वाकई कि हम जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, इतना कोई इस्माइली भी नहीं जानता होगा। और यही वजह है कि इस्माइली भड़क जाते हैं, वो नहीं सुन सकते अपने इमाम के बारे में, हमारा इमाम भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि एक तो तुम शिर्क कर रहे हो अल्लाह के साथ मिलाकर उसको, दूसरा वो इंसान ऐसा है, तो फिर सोचने तो बनता है ना। बिल्कुल
बिल्कुल बनता है। और जब तक हमने वो चीजें दिखाई जो कि जाहिर थी सामने थी, तब भी ये लोग आंखों में पट्टी। अब जब हर किसी को पता है कि दज्जाल ने आना है, दज्जाल के हामी पहले से ही उसकी तैयारी करेंगे, उसके लिए पहले ही प्रिपरेशन करेंगे, तो अब दो ग्रोह तो बनेंगे, एक ग्रोह जो सच का साथ देगा, इमाम मेहदी का साथ देगा, और वो एक ग्रोह होगा जो कि दज्जाल का साथ देगा। हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम। जी हुसैन भाई बोलिए।
जी
वालेकुम सलाम।
ये आशीष हैं के बारे में आपने ये जो जानकारी दी है, बिल्कुल हाँ आशीष हैं जी जी ये इसके बारे में मैंने 10 साल पहले पढ़ा था, जो आप ये ने जो जानकारी दी है तो ये बिल्कुल ट्रुथ है कहानी। और ये ऐसे ही जिसके डाइन होते थे और ये सलाउद्दीन युद्ध के टाइम में भी थे।
ऐसा ही है, पहले जो है वो नॉवेल्स लिखा लिखे जाते थे हसन बिन सबा की जन्नत, और हम छोटे हुआ करते थे तो हमें नहीं पता था कि हसन बिन सबा जो है वो हमारा इस्माइली लीडर है, और कभी उसके बारे में पता नहीं था, हमें बताया भी नहीं जाता था। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब वो नॉवेल्स कभी स्कूल वगैरह में या कभी वो आके छपा करते थे, तो ऐसा कहानी तो मैंने पढ़ा, लेकिन कभी भी उस नॉवल में ये नहीं लिखा होता था कि ये कोई इस्माइली लीडर था या इस्माइली। और जब वो उसकी उस नॉवल में जो चीजें लिखी होती थी कि उसने ऐसी ऐसी जन्नत बनाई कि जहाँ पे उसने औरतें तक लाके रखी थी, पूरे सीरिया से ईरान से खूबसूरत औरतें लाके रखी थी उसने, वहां पर जन्नत में जो है वो रेप्लिका बनाया था दूध की नहरों का, उसके अलावा वो ड्रग्स देता था, और ड्रग्स देने के बाद जब वो बंदा उसको वो जन्नत दिखाई जाती थी, जब वो होश में आता था तो वो बौखला जाता था। अब उसको जो ये होता था कि मैं किसी सूरत वापस उसी जगह चला जाऊं, तो उसको लालच ये दी जाती थी कि तुम जब अब मेरे लिए मेरे हुक्म के लिए जान दे दोगे तो तुम वापस उसी जगह चले जाओगे। ये लोग हमें कहते हैं कि जी आप लोग अल्लाह अकबर करके फट जाते हो, आप लोग जो है वो सुन्नी ये करते हो, शिया ये करते हो, इस तरह की बातें करते हैं। असल में तो जो पहले दहशतगर्द थे, फर्स्ट टेररिस्ट जो थे, वो तो इस्माइली आगा खानी है। और इस्माइली आगा खानियों के लिए चाहे जो भी सुन रहा हूं मैं, एक बात जो अपनी तरफ से नहीं बल्कि हमारे उलमाए कराम की फतवा जात से जो कि कुरान और हदीसों से ही लिए गए हैं, उसके हिसाब से ये लोग बिल्कुल भी मुसलमान नहीं हैं। तो आजकल जो एक्स मुस्लिम्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं उसमें से मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी वो हैं जो कभी मुसलमान थे ही नहीं, जैसे कि मिर्जाई यानी कि कादियानी जो है वो, और आगा खानी। जो एक्स मुस्लिम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एक है ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारा हैदर करके लड़की है, इवन शी इज आगा खानी। और इसके अलावा समीर जो एक बंदा है एक्स मुस्लिम चश्मे वाला, नॉट दैट हिजड़ा टाइप, तो वो जो समीर एक्स मुस्लिम है जो कि बाहर मुल्क रहता है, नॉट द इंडियन वन, वो भी आगा खानी रह चुका है। तो ये मोस्टली आगा खानी होते हैं या कादियानी होते हैं, मुनकर हदीस होते हैं, जो कभी मुसलमान थे ही नहीं, उनको एक्स मुस्लिम्स बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जो कभी मुसलमान थे ही नहीं, हम उनको मानते ही नहीं कि उन्होंने कभी इस्लाम छोड़ा, क्योंकि उन्होंने कभी इस्लाम एक्सेप्ट ही नहीं किया था। जी हुसैन भाई।
जी जी हसन बिन सबा ने पहले जब शुरू में नबूवत का दावा भी किया था, लेकिन वो चल नहीं सका, बाद में इमाम बन गए, इमाम का दावा किया।
नहीं वो मिक्सअप कर गए आप, मैं आपके जाने के बाद एक्सप्लेन कर दूंगी। यही तारीख में जो प्रॉब्लम आई है कि तीन तरह के हसन थे और तीनों हसन को मिलाकर जो है वो एक नई खिचड़ी बना दी गई थी। एक्चुअली तीनों हसन का जो किरदार है इस्माइली रिलीजन में वो डिफरेंट है, एक हसन बिन सबा है, एक हसन अल्लाह जिक्र सलाम है, और एक हसन अली हसन तूसी है। तो इनको मिला दिया गया था। असल में जो जिसने जन्नत वगैरह स्टार्टिंग की थी वो हसन बिन सबा ने की थी, लेकिन जो हशाशीन से उसको सही में फॉर्म करने वाला हसन अल्लाह जिक्र सलाम है, जो कि इमाम का दावेदार बना, जिसने इमाम मेहदी होने का भी आखिर में क्लेम कर दिया, और उसी ने ही शरीयत मंसूख कर दी थी कि अब इस्माइली मजहब में शरीयत की पाबंदी नहीं होगी। जी हुसैन भाई कुछ और कहना है आपने?
नहीं थैंक यू वेरी मच आप लेने के लिए,
बहुत शुक्रिया। कोई सिस्टर कहना कुछ कहना चाहे तो जरूर कह सकती है। और आमिर भाई कभी कमेंट आया जरा वो पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट ही है। कहते हैं कि ये लोग ना पहले मुसलमान होते हैं ना बाद में, इनकी हालत आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला होती है, पहले भी बेईमान और बाद में भी बेईमान, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बस जो जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं ना, जैसे कि हिंदू हैं क्रिश्चियंस हैं, उनको जब कोई ये कह देता है कि जी मैं मुसलमान हूँ, तो वो वेरीफाई नहीं करते कि मुसलमान है भी तो किस टाइप का, मुसलमान तो कभी होते ही नहीं है। तो आजकल जो है ना मार्केट में फेक मुस्लिम्स की जो है वो भरमार हुई हुई है, और फेक एक्स मुस्लिम की डबल भरमार हुई हुई है। तो सिस्टर्स आप में से कोई कमेंट करना चाहे तो कर दें, और मैं फिर अगर कोई कॉलर हमें ज्वाइन नहीं करता तो मैं स्ट्रीम को एंड कर देती हूँ, और फिर इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग शेयर कीजिए। जी अनुषा,
ये लोग अपने आप को हम बोलते हैं ना कि ये लोग मुस्लिम नहीं है तो हमें रिवर्ट होने के बाद अंदाजा हुआ, लेकिन ये लोग अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं, जबकि ना ये कुरान पढ़ते हैं, ना कुरान की किसी आयत को ये फॉलो करते हैं, ना ये हदीसों को मानते हैं, ना ये पांच टाइम की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये अपने आप को बड़े फखर से मुसलमान कहते हैं कि हमारा जो इमाम है वो चलता फिरता कुरान है और हम उसको फॉलो करते हैं। तो फिर जो इमाम कहता है तो फिर वो ये करते भी है, जैसा कि अभी भी है कि जिस देश में रहो वैसे ही बन के रहो। तो जो फॉरन कंट्रीज में जितने भी इस्माइली है तो उनकी ड्रेसिंग देख लो आप, जमात खानों में कैसे पहन के जाती है, इवन दो कराची में भी देख आप कैसी ड्रेसिंग होती है। तो इनका इमाम इनको जब बोलेगा ना कि कपड़े उतार दो तो ये उतार भी देंगे, इतना ईमान है इनका।
अब इधर एक पॉइंट आया था कि जहां पर कहा गया कि जो यूरोपियन सोसाइटीज थी, सीक्रेट सोसाइटीज, नाइट टेम्पलर्स थे, रेजरेक्शंस वाले थे, या फ्रीमेसन्स थे, इन्होंने जो है वो हशाशीन की तर्ज पर उन्हीं के साथ अलायंस करते हुए उनसे सारी टेक्टिक सीखी। अब कहा यह जाता है कि जब उन्होंने इसी तरह इनसे सीखकर जब वो अपनी सोसाइटी में गए तो पोप ने उनको मार भगाया, क्योंकि इन्होंने वही हरकत की जो इस्माइलियों ने हमारे साथ की। इस्माइलियों ने उसकी शक्ल बिगाड़ के इस्लाम की, कोई एक नया वर्जन ला के उसको फैलाने की कोशिश की। तो वो जो यूरोपियन सीक्रेट सोसाइटीज थी उन्होंने क्या किया कि क्रिश्चियनिटी की शक्ल बदल कर उसमें थोड़ा सा इस्लाम का सूफीज्म डाल के एक नई चीज लाकर सामने रखी। अच्छा, यहाँ पे मैं वो पॉइंट बता दूं कि जब नाइट टेम्पलर्स ने, फ्री मेसन्स ने एक नई आइडियोलॉजी दी जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मिक्स करके एक नई चीज बताई, वही चीज आज कल खलील अंदानी प्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आप सर्च करें इस्माइली मिशनरी क्रूसिफिक्शन एंड इस्माइलिज्म, तो उसमें उसने क्या किया है कि जो क्रॉस का निशान है, क्रॉस का जो सिंबल है, उसमें उसने ला इलाहा सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह वो लगा के जस्टिफाई कर रहा है कि ये जो क्रूसिफिक्शन है यानी कि जो सलासा का अकीदा है ये एक्चुअली हमारा ला इलाहा सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अब अल्लाह पाक तो लानत भेजते हैं कि ट्रिनिटी वाले अकीदे पर, कि मत कहो कि सलासा है या तीन है, एक नहीं है तीन है। तो वहां पर खलील अंदानी जैसा बंदा जो है वो नाइट टेम्पलर्स और फ्री मेसन्स की आइडियोलॉजी को बिलीव करते हुए वही चीज दिखा रहा है। इनके इमाम को अगर आप देखें तो वो पोप्स वगैरह के साथ जो है चर्चेस में जाकर वहां पर सारी स्पीचेस दे रहा होता है। इस्माइली इस बात को क्यों नहीं समझते कि इनका इमाम चर्चेस में तो जा रहा है, बड़ी बड़ी अंग्रेजों की कॉन्फ्रेंसेस में तो जा रहा है, इनका इमाम जो है वो मस्जिदों में क्यों नहीं जाता, इनका इमाम जो है वो इस रिलीजियस जगहों पर जाकर क्यों नहीं सरमन देता, एक इमाम है वो खुतबा क्यों नहीं देता, इमाम है वो खुतबा ही नहीं दे रहा, इमाम है वो अजान नहीं दे रहा, इमाम है वो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो इमाम काय का समझ नहीं आता।
ये जो खलील अंदानी वाली बात आपने कही, इस पे मुझे एक बात याद है कि ये बहुत अच्छे तरीके से प्ले करते हैं इनके मिशनरीज और ये को जो इमाम है, लाइक जो इमाम है ऐसा कोई जो है इनका फरमान नहीं होता जिसमें इस चीज का जैसे जादू और इस तरह का आपने बताया कि ये लोग जो है अपने आपको बहुत अच्छा साबित करवाते हैं कि हम इन चीजों से बहुत दूर हैं, लेकिन वहीं खलील अंदानी जो चीजें शो कर रहा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिशनरीज है ना वो इनकी इमाम की जो है वो लाइफ देखकर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जमात का जो है ना माइंड डाइवर्ट करते हैं। जबकि जैसे आपने बताया कि इमाम को कभी भी जो है वो खाना काबा में नहीं देखा गया, ठीक है, और कहीं भी आप चर्चेस में देख लो उनकी पिक्चर, कोई भी खाना काबा में या कोई भी नमाज पढ़ते हुए कोई खास ऐसी पिक्चर नहीं है, ना इनके इमाम ने खुतबा दिया ना इनके इमाम नमाज पढ़ते हैं, ये ज्यादातर चर्च में होते हैं। तो ऐसी बात है कि वो जो खलील अंदानी सामने कर रहा है देखेंगे तो वो उसी को फॉलो कर रहा है और ये अपने इमाम को खुश कर रहे हैं और इमाम इनको फिर देते भी बहुत हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी कम्युनिटी का जो है ना माइंड डाइवर्ट करें, डायरेक्टली मौला के फरमांस नहीं आएंगे इनको, ये इनके मिशनरीज के थ्रू जो है इनका माइंड डाइवर्ट करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इस्माइलिज्म भी खत्म होगा, ये सारे लोग क्रिश्चियंस हो जाएंगे क्योंकि इनका इमाम खुद भी क्रिश्चियन ही लगता है और उसकी सारी एक्टिविटीज भी क्रिश्चियंस वाली ही है, तो इस्लाम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इनका।
बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये देखें स्क्रीन पर, शिया इस्माइली मुस्लिम क्रिस्टोलॉजी। अब क्रिस्टोलॉजी जो है ये कहाँ से आई है, वो शिया इमामी इस्माइली मुस्लिम जो मुसलमान होके क्रिश्चियनिटी पर और उसके क्राइस्ट पर और उसके क्रूसिफिक्शन पर बिलीव करे वो मुसलमान कैसे हो सकता है, लेकिन ये इमाम का, आगा खान का टॉप नॉच मिशनरी है जो कि आगा खान के इस्माइली स्टडीज में काम करता है, रिसर्च करता है, वो शख्स जब क्रूसिफिक्शन को, क्रिस्टोलॉजी को एक्सप्लेन करता है और उसको इस्लाम पे फिट करने की कोशिश करता है, इसी के तो ये पैसे लेता है ये शैतान। तो यहाँ पर हमने इनका एजेंडा प्रेजेंट किया, हाईली वेटेड टॉपिक था, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और अब हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और हमेशा की तरह कोई भी इस्माइली अपने इमाम को बचाने नहीं आया, ना इमाम इनको बचाता है ना ये इमाम को बचाते हैं, और फिर आखिर में ये बेचारे भी इसी तरह रह जाते हैं। अच्छा, ये जो लिख रहे ना आई हेट मिशनरीज, ये जो हसन बिन सबा, हसन अला जिक्र सलाम, इसके अलावा राशिद सिनान, ये जितने भी जिन्होंने भी असैसन बनाई थी, मजे की बात ये तीनों दाई थे, ये तीनों मिशनरी थे, ये तीनों जो थे वो अल्लाह जिक्र सलाम ने अपॉइंट किया था, पहले वाले को पहले वाले इमाम करके गए थे, हसन अल्लाह जिक्र सलाम ने राशिद अद्दीन को किया, पहले हसन अल्लाह जिक्र सलाम अपने आप को दाई का बेटा कहता था, फिर दाई कहने लगा और फिर इमाम कहने लगा। तो असल में इमाम जो इनका आगा खान है ना वो हमेशा पपिट मास्टर की तरह कठपुतलियां नचलाना चाहता है, जब इनकी कठपुतली से कोई गलती पकड़ी जाती है उसकी तो फौरन ही उसको छुड़ाकर कह देते हैं ये तो मेरा दाई था, मैंने तो उसको छोड़ दिया, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह नसीरुद्दीन हुंजाई के साथ हुआ कि नसीर जब तक इमाम के कसीदे पढ़ता रहा, नसीरुद्दीन हुंजाई जब तक उसकी बातों पर अमल करते करते उसने नई तालीमात बनाई, वो सब जब तक कर रहा था तब तक तो वो मेरा रूहानी प्यारा बच्चा, इतना बड़ा एक लेटर लिख के आगा खान ने उनको सेंड कर दिया था कि तुम मेरे रूहानी बच्चे हो, ये हो वो हो। जिस दिन उस रूहानी बच्चे ने औरतों के पैर चूमने शुरू कर दिए, लात मार दी, उसको बैन करवा दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो पाकिस्तान में जो है वो खाना हिकमत वाले बैन हो गए, नया नाम रख लिया है उन्होंने ल्यूमिनस सोसाइटी। ये सारे इल्यूमिनाटी और ल्यूमिनस सोसाइटी के नाम पे क्यों रखते हैं? अच्छा, एक शख्स को पता हो कि इल्यूमिनाटी जो है वो कंट्रोवर्शियल नाम हो चुका है, इल्यूमिनाटी जो है वो एक सिंगल आई के साथ भी लिंक हो गया है। मेरा सवाल यह है कि इमाम को सबको छोड़कर कोई और नाम नहीं मिला कि उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन है उसका नाम भी इल्यूमिनेट रख दिया? उस ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। उसके अलावा अपने अवार्ड्स का नाम भी इमाम साहब ने इल्यूमिनेट अवार्ड्स रख दिया? मतलब क्या करना चाह रहे हैं? सिंबल भी वही पहन रहे हैं। ये देखिए, इल्यूमिनेट आगा खान फाउंडेशन, इल्यूमिनेट समर आगा खान फाउंडेशन, आगा खान सेलिब्रेटिंग द विनर्स ऑफ इल्यूमिनेट 2022 मल्टीमीडिया। अच्छा, ये मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। आपको पता है कि इस वक्त जो कब्जा किया हुआ है इल्यूमिनाटी ने, वो सारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किया हुआ है। तो आगा खान भी म्यूजिक अवार्ड्स रख रहा है, आगा खान भी म्यूजिक को प्रमोट कर रहा है, और आगा खान उन तमाम चीजों को प्रमोट कर रहा है जिसको इल्यूमिनाटी करता है। आगा खान ने, व्हाट अ कोइंसिडेंस, अपने अवार्ड का नाम भी इल्यूमिनेट रखा हुआ है और अपनी फाउंडेशन का नाम भी इल्यूमिनेट रखा हुआ है। इमाम को कोई और नाम नहीं मिला, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाम इमाम ने अपनी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी क्या, मैं सोसाइटी ही बोलूंगी, उन्होंने ये चूज कर लिया। अच्छा, मजे की बात ये कि आगा खान ट्राइंगल वाला जो बैज है जो कि मलका ने ही उनको दिया, वो पहन के फिर रहे होते हैं विद वन आई, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आप लोग को स्क्रीन पे एक और चीज दिखाई थी, आगा खान का फ्री मेसन की वेबसाइट पर नाम। फ्री मेसन सारे वो थे जो कि एक थर्ड डिफरेंट एजेंडा लेके, एक मेमोरेंडम था, उस मेमोरेंडम जो था, अगर आप सर्च करोगे कि फ्री मेसन्स का एजेंडा, आप सिर्फ इतना लिखोगे तो वहां पर आपके पास आ जाएगा कि वहां पे टॉप नॉच में फ्री मेसन की जो फोर्थ नंबर की लिस्ट में आता है, उसमें आता है कि औरतों का बेपर्दा और उनको जो है वो सोसाइटी में बाहर निकालना। तो आगा खान ने, आगा खान थ्री ने सबसे पहले औरतों से उनका पर्दा छीना, उन औरतों से कहा कि अगर तुम नहीं कमाती तो तुम जो है वो अपने घर का साथ देती। तो आज यही वजह है कि एक इस्माइली औरत भी दसवन देती है, क्योंकि वो कमाती है। अगर नहीं कमाती होती तो आगा खान उसे नहीं मांगता। तो आगा खान ने कहा कि अगर मुझे इन औरतों को से भी पैसे लेने हैं, इनसे भी दसवंध लेनी है, तो इनको खुद कफील बनाओ और उनको ये कहो कि तुम इंडिपेंडेंट वुमेन हो और इसी वजह से तुमने जो है वो अब कमाना। लेकिन वो औरतें इंडिपेंडेंट होने के नाम पर आगा खान को कमा के दे रही हैं। आमिर भाई ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी।
बिल्कुल आ रही है, बता दीजिए।
माशाल्लाह जबरदस्त। देखिए जी, मैं इस्माइलियों की तरफ से सफाई देने आया हूँ। आप हमेशा जो आगा खानिज्म यूट्यूब चैनल है या ये जो आपकी टीम है, ये इस्माइलियों को बहुत ज्यादा आप तंग करते हैं, और वक्त के इमाम जो हैं उनसे आपने टक्कर ली है, और गोया आप जो है ना, जो एक वक्त का इमाम और तर्जुमान है, उससे आप नाराजगी मोल लेकर अपनी दुनिया और आखिरत जो है उसको खतरे में डाल रही हैं। अभी देखें आपने, मैं मजबूर, मैं खामोशी से सुन रहा था इस इंतजार में कि कोई इस्माइली बेचारा आएगा जिसके साथ फर्रा मिनल मातरी वकामा तहतल मीजाब, बारिश से बचने के लिए बेचारे आबशार के नीचे खड़े हो गए हैं। लो दसो, यानी बारिश में पहले 15-20 मिनट लगने थे भीगने में, आबशार के नीचे तो सेकंड्स के अंदर इन्होंने गीले होकर बीमार पड़ जाना है। तो इन बेचारों के साथ ये हुआ। खैर, इनका मुकदमा तो ये नहीं लड़ेंगे, तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। ये जो जी आपने एक आंख इल्यूमिनाटीज की और जायनिस्ट की जो ये एक जो है सीक्रेट सोसाइटी है उसको आपने लेबल कर दिया, ये बड़ी ज्यादती है। देखिए, इस्माइलियों की जो एक आंख जो आप दिखा रहे हैं ना, ये बदनीयत की आंख है। ये जो दो आंखें हैं ये जाहिरी चीजों को देखती हैं। इस्माइली जिस एक आंख की वो जो लगा के घूमते हैं आगा खान करीम साहब बुजुर्ग हस्ती हैं, ये जो तीसरी आंख है ये बातनियत की एसटोरिक आई है। इसकी मसाल आप यूं समझें कि जब इंसान जाहिरी मादी या एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड के अंदर खोया रह जाता है, वो उसकी खूबसूरतियों में, उसकी चकाचौंध में, उसकी मिठास के अंदर वो अपने ईमान को, अपने खालिक से ताल्लुक को भूल जाता है। ये तीसरी आंख जो है ये सिम्बोलिकली या एक सिग्नल है, इंडिकेशन है, ये बातनियत का इशारा करती है। ये कम से कम आप नजरियाती करें उनकी आंख के साथ। जाहिरी तो बंद हो ही गई हैं, आप बातनी भी तो ना बंद करें अब, क्योंकि उन्होंने तो चुप साध ली है, वो तो चुप करके खामोश हो गए हैं। उसकी वजह यह है, उनका मानना सिर्फ यह है, हमने चूंकि वक्त के इमाम की बात कर ली लिहाजा अब हमें कुछ भी करने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि इमाम साहब ने कह दिया मैं दूर बैठे अपनी जेट स्की के ऊपर या अपनी यॉट के ऊपर ग्रीन कलर का कच्छा पहन के बैठा हूँ। हाँ, अलबत्ता गुना मैंने सबके माफ कर दिया दूर से, ठीक है जी। वो अलग बात है कि पास पड़ी आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे इस एज में, मगर मीलों को सो दूर जो इस्माइली गिड़गिड़ाता है बंद कमरे के अंदर, तो हुजूर उसकी आवाज जरूर सुन लेते हैं। तो ये जो है उनकी मकबूल, तो इसलिए वो तसल्ली कर बैठे हैं। मैं एक चीज यहाँ एक और रखना चाहता हूँ। इस्माइली चूंकि दावा करते हैं वो कुरान को मानते हैं, वो अलग बात है कि हम उनको कहते हैं आप कुरान को मानते हो, कुरान की नहीं मानते, क्योंकि को मानने वाले तो बहुत हैं। ये तो हम मुसलमानों से भी गिला शिकवा करते हैं कि अल्लाह के रसूल को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, की कब मानोगे, फर्क का की का या को की का है, ये फर्क है। तो उसका अल्लाह ने जिक्र जैसे सूरह आल इमरान में किया गया, नबी इनसे कहें कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मेरी इत्तबा करके जाहिर करें ना। मोहब्बत का इजहार होता है, मोहब्बत लफ्जों में नहीं होती।
لفظوں میں بلند بانگ دعوے تو ہو سکتے ہیں مگر ان کا اظہار انسان کے عمل سے ہوتا ہے. جو آیت میں پڑھنے لگا وہ اسماعیلیوں کے لیے خاص طور پر, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ گویا حق ان کے پاس ہے اور اس پر انہوں نے آنکھیں بند کر لی. اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے آخری رکوع چیپٹر 18 ہے, آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان, یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر جمعے کو, کل جمعہ ہے یقیناً, سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یہ آپ کو بہت سے مسائل, میرے تو البتہ زندگی میں سورہ کہف کی ٹرانسلیشن پڑھنے سے, یا عربی میں پڑھنے سے, یا ٹرانسلیشن اس کی پڑھنے سے, خاص طور پر ٹرانسلیشن ضرور آنی چاہیے, آپ کو کئی خفیہ راز ملتے ہیں. اور سورہ کہف کا ایک اور بھی نقطہ یہاں پر بیان کر دوں, سورہ کہف حقیقی معنوں کے اندر کئی باطنی حقیقتوں سے پردہ اٹھا کر ان کو ذہن نشین کروا دیتی ہے کہ ان کا اصل مطلب کیا تھا. تو سورہ کہف پڑھنا بڑا ضروری ہے اس کانٹیکس میں. تو آیت کیا ہے, ذرا اسماعیلی بھائی ذرا کان توجہ سے دیجیے گا, وہ یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے نبی, ان کو کہہ کر تو دیکھیں کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دے دوں کہ جو لوگ آنکھیں میچ کر یہ سوچے بیٹھے تھے کہ کوئی بات نہیں, ہمارا امام ہمیں, امام زمان ہمیں بچا لیں گے, ہم تو جو ہے نا وہ دسوند دیتے ہیں, ہم تو جناب لڈی ڈال لیتے ہیں, ہم تو ڈانڈیا بجا لاتے ہیں, ہم تو جناب جماعت خانوں میں جا کر اللہ اللہ خر کر لیتے ہیں, لہذا ہمارا تو کام ہو گیا ختم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, ان کی ساری محنت کھیر بریانی حلیم نہاری اور جناب فرنی اور زردہ جو پکا کر امام صاحب کی فوٹو کے آگے رکھ کر اس کا ریٹ لگواتے تھے, ذل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ کچن میں کھڑے ہونا, وہ پسینہ نکلنا, وہ مشقت اٹھانا, وہ نئے کپڑے میک اپ پرفیوم لگا کر جماعت خانوں میں جانا, ذل سعیہم فی الحیات الدنیا, ان کی دنیا کی یہ ساری کشت اور کوششیں, دوڑ دھوپ, مشقت, مصیبتیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی. ویحسبون انہم یحسنون صنعا, مگر دنیا میں حالت ان کی یہ تھی ذہنی طور پر کہ وہ یہ سارے کام اپنے امام اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جب یہ آیت میری نظر سے گزری, میرا حقیقت کو اور باطل کو اور دنیا کے معاملات کو, اعمال کو, نیت کو, ظواہر کو دیکھنے کی دشا بدل گئی. جو قرآن نے جب یہ نقطہ رکھا کہ بظاہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے, بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے, مگر حقیقت میں اس کے اعمال اس کے منہ پر دے مارے جاتے ہیں, یہ چیز نے ایک شغف پیدا کیا کہ یار دیکھوں تو صحیح جو کر رہا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے. پتا کیسے چلے گا؟ جب قرآن اور سنت, اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا طریقے پر چلو گے تبھی تو وہ مصدقہ اور مثبت ہوگا نا, اور آپ کے طریقے سے جب ہٹ جاؤ گے وہ طریقہ منہ پر دے مار دیا جائے گا. حدیث شریف اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہمارے معاملات کے اندر جو ہم میں سے نہیں تھا, یعنی دین میں کسی نئی چیز کو, کیونکہ اس میں فی امرنا ھذا کی شرط آ گئی کہ جو شریعت کے معاملات میں تبدیلی ایجاد کرنے کی کوشش کرے گا, فہو رد, وہ معاملہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ خود حدیث میں آ گیا. کیا مراد ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صحابی بھی ہو, کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہو, کوئی بڑے سے بڑا امام بھی ہو, اللہ کے رسول کے بعد شریعت کی تبدیلی کی جسارت جو کرے گا اس عمل کو رد کر دیا جائے گا. اب اس آیت کو اور اس حدیث کو اس کمبینیشن پلس مائنس از ایکول ٹو کر کر رزلٹ نکال کر رکھیں. اسماعیلی جماعت ایک سادہ انسان سوچے, یہ ساری زندگی مکھی پر مکھی مارنی ہے, یہ سوچنے کی جسارت کرنی ہے کہ آیا جس طریقے پر امام صاحب نے ہمیں کھڑا کیا ہے, اول اوائل میں وہ خود بھی چل رہے ہیں یا نہیں, اگر خود چل رہے ہیں, نہیں چل رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں وہ طریقہ بھی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, یہ بڑا ضروری تھا اس چیز کو سمجھنا. خیر, ایک اور نقطہ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ دیکھیں عام اسماعیلی جو اس وقت مجھے سن رہا ہے اس کے ذہن میں ایک چیز شیطان وسوسہ ڈالے گا جو کہ اچھا ہے, وہ وسوسہ آنا اور مجھے اس کا ذکر کر دینا. وہ اس لیے کہ انسان کا تجسس کی جو انسٹنکٹ ہے نا, کیوریوسٹی کی, وہ بعض اوقات اس کو حقیقت کی طرف لے آتی ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہو اور اللہ کا فضل اور توفیق شامل حال ہو جائے, اور اگر کسی کی کیوریوسٹی نیگیٹیوٹی کے اندر چلی جائے تو وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو یہ جو جبلت ہے, یہ انسٹنکٹ ہے کیوریوسٹی کی, تجسس کی, اس تجسس کی جبلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اسماعیلیوں سے کہتا ہوں, یار جان بوجھ کر کوئی جہنم میں جاتا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے, کسی کھلی آنکھ, چلتے کان, ٹھیک ٹھاک دماغ والے انسان سے پوچھو کہ وہ 440 واٹ کی جو ننگی تارے ہیں ان کو ہاتھ ڈالے گا. کسی سین آدمی سے پوچھو کہ وہ سوئمنگ نہ آنے کے باوجود گہرے پانی میں چھلانگ مارے گا. کسی عقل والے شخص سے پوچھو کہ وہ جلتی آگ میں دنستہ طور پر انٹینشلی قصدن اس کے اندر ہاتھ پاؤں یا سر دے گا؟ نہیں دے گا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہنم میں جو جا رہے ہیں وہ پھر 10 دن جائیں گے کیا؟ کل قیامت کے دن جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا کیا وہ چاہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں؟ نہیں. تو پھینکے کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اس کھوپڑی کو استعمال نہیں کیا تھا. یہ ہے وجہ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں. اور انسان کے پاس جو کمال اور جمال اور معراج کی نعمت ہے حقیقی معنوں کے اندر, وہ اس کی عقل ہے. ایک بلینئر کے پاس عقل ختم ہو جائے وہ کل کو بیکار ہو جائے گا, اس کی کیا حیثیت ہے جی؟ نہ واش روم جا سکے گا, نہ کپڑے بدل سکے گا. عقل جو ہے انسان کو ایک باکمال انسان بناتی ہے. عقل, اب عقل ایک انسان کے اندر ہو, جب وہ تار کو ہاتھ نہیں ڈالتا, پانی میں جان بوجھ کے نہیں کودتا, جلتی آگ میں نہیں چھلانگ مارتا, یہ کیا خبر ہے کہ اسماعیلی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیے جا رہے ہیں اسی آس میں کہ کل کو جنت میں؟ تو بھائی جہنم میں جنہوں نے جانا ہے ان کو بھی کوئی نہیں ضرورت, وہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اس کھوپڑی کو استعمال نہیں کیا. تو قصہ مختصر یہ, اسماعیلیو ना आप जानबूझ के जाना चाहते हो, ना कोई भी सैन इंसान जाना चाहता है, फिर जाना किसने है? उधर तो सारे रटा डाल देंगे। अल्लाह ताला फिर आपके सामने ये चीज पेश करेंगे कि अल्लाह के रसूल के दीन को कैसे बदल दिया गया। एक चीज और मैं बयान करना चाहता हूँ, इस्माइली गौर से सुने, मैं मात्र चाहता हूँ आपका वक्त नहीं ले रहा, एक दो जुमले बोलना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, कयामत का दिन है, ठीक है, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहां मौजूद है। आप पेशगोई करते हैं, आप ये पेशगोई कर रहे हैं कयामत के दिन के बारे में, कि जिस तरह बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ और मुतअद्दद तवातुर के साथ हदीस है, तो इस्माइली जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुमसे पहले कौमें जिस तरीके पर बर्बाद हुई, तुम भी हू बहू उसी तरीके डगर पर चलकर बर्बाद हो जाओगे, और जब कल कयामत के दिन मेरा नाम लेते हुए आओगे, मैं कहूंगा इनको साइड पे कर दो, क्योंकि खबर दी जाएगी कि इन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया था। सुहकन सुहकन लिमन गैर अबादी, उसके लिए तुधकार है, थुफ है, जिसने मेरे जाने के बाद दीन को बदल दिया। ये जसारत कौन कर सकता था नबी के जाने के बाद? अब ये सोचने का मकाम है, एक मिनट के लिए उस सीन को सामने लेके आए। इस्माइलियों के लिए सोचने का मकाम यह है कि यहूदों नसारा में सबसे बड़े वो ब्लंडर्स क्या थे जिनकी वजह से एक नबी को आना पड़ा और बताना पड़ा कि तुम लोग गलत तरीके पर चल पड़े हो। एक मिनट के लिए सोचें इस्माइलियों, बड़ा मेरे भाइयों सोचो, क्या वो चीज थी यहूदों नसारा में कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि उन्होंने जिस गलती पर चले तुम चलोगे? नहीं आ रहा समझ? मैं बता देता हूँ। इत्तखाज़ू रुहबानहुम अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कुरान में अल्लाह कहते हैं इत्तखाज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, यहूदो नसारा ने अपने पादरियों को अपने रबियों को रब बना लिया था अल्लाह को छोड़कर। अदी बिन हातिम जो अहले किताब में से थे, इस्लाम कबूल किया रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल के पास आए, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल, और ये सही मुस्लिम और सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल ये कुरान की सूरह तौबा में जो आयत है कि यहूदो नसारा ने अपने इमामों को अपने जनाब रबियों को पादरियों को रब बना लिया है, हमने तो कभी उनकी पूजा ही नहीं की थी। इस्माइल को गौर से सुनना, हमने तो कभी पूजा ही नहीं की, हमने तो आगा खान की कभी पूजा ही नहीं की, हम आगा खान को तो अल्लाह समझते ही नहीं, हम तो उनको इमाम समझते हैं, वो तो अल्लाह रसूल में से हैं, हमने तो कभी उनके सामने सजदा भी नहीं किया। अलग बात है क्या हो रहा है क्या नहीं वो नजर आता रहता है, मगर एक मिनट के लिए कॉमन ले मैन जो इस्माइली है, मैं उसके आर्ग्यूमेंट को सामने रखकर सोच रहा हूँ सिचुएशन को, यार हमने तो कभी आगा करीम खान की कोई इबादत ही नहीं की, हम कलमा थोड़ी ना उसका पढ़ते हैं, कलमा तो वही पढ़ते हैं जो आपका है। ये हमें बातें सुनने को मिलती हैं जब इस्माइलियों से इंटरेक्शन होता है। अब जरा सुनना, अदी बिन हातिम ने भी यही कहा, अल्लाह के रसूल हमने तो कभी उनको रब बनाया नहीं, कभी उनकी मूर्ति नहीं बनाई, कभी उनको सजदा नहीं किया, अल्लाह के रसूल कुरान कैसे कह रहा है कि आपने रब बना लिया? अल्लाह के रसूल ने कहा तुम शायद सजदा करने को और कलमे में नाम शामिल करने को या उनकी पूजा करने को रब बनाना समझ बैठे हो, मसला यही तो है, तौहीद का फलसफा समझ नहीं आया, तो आओ बताऊं तुम्हें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे ईमानदारी से बताना अदी, जो तुम्हारे मुरब्बी और पादरी और इमाम अल्लाह की दी हुई शरीयत में हलाल करते थे और हराम करदा चीजों को हलाल करते थे और हलाल करदा चीजों को हराम करते थे, क्या तुम उनकी बातों को मिनो अन मानते थे या नहीं मानते थे, कि जिस तरह अल्लाह की बात होती है? अदी बिन हातिम खामोश होकर कहने लगे अल्लाह के रसूल बिल्कुल ऐसा ही है, होता तो ऐसा ही था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अदी और रब बनाना क्या है, और रब बनाना क्या है? इस्माइलियो अपने आपको एक मिनट के लिए रखकर सोचो पोजीशन में, इमाम साहब ने शरीयत मंसूख कर दी, नमाज पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं, जकात और तरीके की है, हज का बातिल माना और है, वुजू और मुराद है, ये फोटो सामने रखी है पूजा नहीं है, तवस्सुल है, ये वसीला है, ये इबादतें हैं, ये फलाना है, हमारी ये दुआएं हैं। एक मिनट के लिए सोचो, अल्लाह के रसूल ने कहा था बिल्कुल यहूदो नसारा जिस तरीके पर चलकर बिगाड़ पैदा हुआ था, मेरी उम्मत में भी अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा ऐसे। आप अपने आप को रख कर देखो, अल्लाह के रसूल की वो तफसीर रख कर देखो जो इब्न हातिम को की, जैसे यहूदो नसारा ने अपने रबियों पादरियों को इमाम बना लिया, अपना रब बना लिया था इमामों को, अपने आप को रख कर देखो। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास इस्माइली मेरे दोस्तों बहनों भाइयों क्या जवाब रह जाता है कि तुम अपने आप को आंखें मीच कर ये सोचो कि हमारे इमाम ने जो कह दिया है वो लोहे पर लकीर है या वो बॉटम लाइन है, किस तरह का एक्सक्यूज कर पाओगे? कुरान में अल्लाह ने कहा था, चलो आखिरी हाल दे, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन दे देता हूँ इस्माइलियों को। सूरह निसा की आयत ने रहती दुनिया तक कुरान और सुन्ना मुश्तरक जो मुसलमात हैं जिनको हम सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं या एपिस्टेमोलॉजिकल हमारे रेफरेंसेस कहते हैं एविडेंस के लिए या सोर्सेज, उनके लिए जो हमें मुसद्दका हैं मुत्तफिका हैं जिस पर हम मुत्तफिक हैं वो है कुरान और अल्लाह के रसूल का फरमान, ठीक है जी, यही दो चीजें हैं कुरान और सुन्ना। अल्लाह ताला ने सलूशन पेश कर दिया, अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना। अब चूंकि रसूल बशर थे, इस दुनिया से कूच कर गए, तो उनके बाद इन्हीं दोनों के तरीके पर चलने वाले जो उलुल अमर होंगे उनकी भी तबाह कर लेना। अब सोचने की बात यह थी कि अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह तो जारी बात है रसूल के साथ ताल्लुक की वजह से कुरान पेश, वो तो कुरान मुकम्मल हो चुका, अल्लाह के रसूल बशर होने की वजह से अपनी उम्र गुजार कर दुनिया से कूच कर गए, اب بعد میں جو بندے آئیں گے ان سے تو ہو جائے گا اختلاف, کیونکہ ان پر تو وہی نہیں آتی, ان سے اختلاف ہو جائے گا. پھر ایسی صورت میں اللہ ہم کریں گے کیا؟ آج کے اسماعیلیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنے کا سولوشن کی جگہ کیا ہے؟ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر اسماعیلیوں میں اور مسلمانوں میں اگر خانزم چینل کے اوپر اختلاف ہو جائے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ویسے ہے, تنازع ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, بس اول الامر غائب ہو گیا بیچ میں سے, امام غائب ہو گیا بیچ میں سے, آغا خان غائب ہو گیا بیچ میں سے, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا کر دیکھ لینا, جو بات قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی ہمیں چاہے آغا کریم خان صاحب کریں, چاہے ویٹیکن کا پوپ کرے, چاہے ہندوؤں کا روی شنکر کرے, ہمیں ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے جو بات قرآن اور سنت کے مطابق ہو. سمپل میری یہ گزارش تھی, اس کو آپ سامنے رکھ لیں. باقی جو آپ نے ماشاء اللہ بڑے زبردست طریقے سے جو ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے اس کو ایکسپوز کیا, یہ جو امپیریل پاورز ہوا کرتی تھیں کالونائزیشن کے لیے, ان کے پاس ایک بنیادی حربائی ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو, یہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو سننا بڑا ضروری ہے, یہ سیکرٹ سوسائٹیز کو ان کو سمجھنے کے لیے, زائنزم کی جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں ان کا پہلا پلان یہ ہوتا ہے, کیونکہ میں نے ان کا فارمز دیکھے ہوئے ہیں جب یہ کرواتے ہیں بڑے بڑے سیلبریٹیز کو اوتھ لیتے ہیں, جس طرح بوہیمین ایک کلب ہے, بوہیمین کلب الو کی شکل کا, جس میں پرانے وقتوں میں بتاتے تھے کہ اوباما نے بھی اوتھ لیا تھا, بٹ اینی ویز کنسپریسیز بھی ہو سکتی ہیں, مگر کچھ چیزیں لیک ہوئی تھیں ایسے, بش کا تو کنفرم تھا نا وہ بوہیمین کلب کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے سیکرٹ ایجنسی میں. اچھا اب میں جو پوائنٹ رکھ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا, سب سے مشکل کام ہے دنیا کے اندر کسی انسان کا فیتھ چینج کرنا, خاص طور پر جب بائی برتھ کسی فیتھ کے اوپر ہو, دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. مگر اگر کسی سوسائٹی نے کسی ایجنڈے کے اوپر مین پاور سے کام لینا ہے, ان کو فیتھ کو چھیڑنا نہیں ہوتا, کیونکہ جیسے ہی آپ فیتھ کو چھیڑنے کی بات کریں گے وہ بندہ بوتل جائے گا, بگڑ جائے گا, برہم ہو جائے گا, پیچھے ہٹ جائے گا. تو زائن سیکرٹ سوسائٹی نے یہ کام شروع کیا, ان کا پروٹوکول پہلا یہ تھا کہ ہم نے جتنے بندے ہائر کرنے ہیں ان کے بلیف کو نہیں چھیڑنا. اس کا مطلب کیا تھا, ایک کرسچن کرسچن رہتے ہوئے بھی الومیناتی ہو سکتا ہے, ایک ہندو ہندو رہتے ہوئے بھی الومیناتی ہو سکتا ہے, ایک مسلم مسلمان ہوتے ہوئے بھی الومیناتی ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے, وہ اپنے آپ کی آئیڈینٹی کو وہی رکھے جو اس کی بائی برتھ ہے, مسلمان ہندو بھی رہے عیسائی بھی رہے, کام ہماری سیکرٹ ایجنسی کے لیے کرے, سوسائٹی کے لیے کرے, اس کے لیے وہ اوتھ لیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر ٹاپ پریورٹی پر سیکولرائزیشن کو رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ فیتھ چینج کرنا سب سے مشکل کام ہے. یہودیوں نے پاسٹ کے اندر ٹرائی کر کے دیکھ لیا تھا, کرسچنز نے خون خرابے کے ساتھ ٹرائی کر کے دیکھا, عربز نے جو کہ بعد میں بادشاہت ملوکیت قائم ہوئی اس کے نقصانات بھی ہم نے دیکھے, مگر جو فیتھ دلائل کی بنیاد کے اوپر چینج کیا جاتا ہے پھر وہ آپ سولی پر ٹانگ دو لوگ نہیں بدلتے. سابقہ اس کی دلیل ہیں مسلمان مشرکین مکہ کے درد سہنے والے ابتدائی کے, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو میرا مقصد اس وقت یہ ہے کہ سیکرٹ ایجنسیز کو پوچھ سکتا ہے نا کہ اسماعیلیوں کو کب انہوں نے کہا آپ قرآن کے خلاف بات کریں یا اس طرح, وہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں فلانا کہتے ہیں. سیکرٹ ایجنسیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیتھ چینج نہیں کرنا, آپ نے آئیڈیالوجی بیک اینڈ کے اوپر اس طریقے سے رکھنی ہے کہ آپ سیکولرائزیشن کو, لبرلزم کو, ماڈرنزم کو پروموٹ کریں. یہ ہے وہ ٹیکنیک جس کے اوپر الومیناتیز ہائر کرتے ہیں. اس کی ایک بڑی بین مثال تھی جنرل پرویز مشرف مر گیا. جنرل پرویز مشرف نے ایک تحریک شروع کی تھی پاکستان کے اندر جس کا نام تھا روشن خیال. سوچنے کی بات یہ ہے کہ روشن خیال کو جب آپ انگلش کے اندر ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کا لٹرل میننگ بنتا ہے الومیناتیز. الومینیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روشن کرنا, انلائٹ کرنا. تو روشن خیالی کی تحریک سب سے پہلے جو چلی تھی وہ میڈیول ایجز کے اندر یورپ کے اندر چلی تھی, جن کو آپ کہتے ہیں انلائٹمنٹ ایئرز, نشأت ثانیہ کا ٹائم, اس کو رینیسنس بھی کہہ لیتے ہیں, مگر اس کا ایک دوسرا نام ہے انلائٹمنٹ. اب انلائٹمنٹ نام انہوں نے انٹینشنلی یہ رکھا تھا کیونکہ وہاں پر کرسچنز کی میجورٹی تھی, چرچ نے پکڑ کے پنجا لگایا پہلے سٹارٹ میں. تو سیکولرائزیشن کرنے کے لیے یورپ میں سب سے متحرک جو لوگ تھے وہ زائنزم تھا. ایک کتاب ہے موسس مینڈلن کالبن کا نام ہے, اس نے کتاب لکھی ہے فرام روم ٹو یروشلم, فرام روم ٹو یروشلم, اس میں پورا چیپٹر اس نے بندھا ہے اس چیز کے اوپر کہ کس طریقے سے جیوز نے پوری پلاننگ کے تحت یورپ کے اندر سیکولرزم کو فنڈ کیا, پروپیگیٹ کیا اور فیتھ نہیں چینج کرواتے تھے. یہ تو میں بتا رہا ہوں کیونکہ جیسے ہی آپ کسی کرسچن کو جا کے کہتے ہیں فیتھ چینج کرو جیو ہو جاؤ, وہ ان کا گربان پکڑ لیتا تھا. انہوں نے کہا یہ کام بڑا مشکل ہے, اور جیوز بائی دیئر فیتھ بائی آئیڈیالوجی وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی یہودی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ماں یہودی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس کی بائی برتھ وہ یہودی نہ ہو تب تک وہ یہودی بھی نہیں, یعنی یہودیت کو آپ قبول نہیں کر سکتے, یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے, غیر تبلیغی ہے, تو آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے. تو انہوں نے مین پاور ہائر کی دوسرے مذاہب سے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اس لیے یہودی ہیں مٹھی بھر ہیں, مگر ان کی اس میڈیا کے اندر ان کے بچھائے ہوئے جال سے ان لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو لبرلائز کیا, سیکولرائز کیا اور ان کو سپورٹ کیا الیکشنز کے اندر اور پاور گین کے اندر. اسی کا پارٹ تھے مشرف دور کے اندر بھی اسماعیلی بھی, اس میں بڑے خصوصی طور پر انوالو تھے قادیانی بھی, کیونکہ قادیانی اور اسماعیلی ایک ہی ایجنڈے پر کام کرتے تھے اور ان کو سیکولرزم سوٹ کرتا تھا. یہی وجہ کہ آغا شورش کاشمیری صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا اسرائیل کے مد مقابل بنانے کے لیے قادیانیوں نے مرزائیل, انہوں نے ایک رسالے کا نام رکھا تھا مرزائیل, کہ جیسے اسرائیل بنا ہے قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مرزائیل بنا دیا جائے. تو مرزائیل کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر سیکولرزم کو پروموٹ کیا جائے. اسماعیلی بھی اسی کا پارٹ بنے اور اسماعیلیوں کو سوٹ کرتا تھا کہ لبرلزم آئے سیکولرزم آئے, اور ایجوکیشن کے نام کے اوپر انہوں نے ماڈرنزم کو پھیلانا شروع کیا. یہی وجہ آپ اسماعیلیوں سے بات کریں گے وہ آپ کو کہیں گے دیکھیں ہمارا امام پوری دنیا گھومتا ہے, کینیڈا کے اپر ہاؤس پارلیمنٹس میں اور سینٹس کے اندر وہ جا کے تقریریں کرتے ہیں, سینٹ سیشنز کے اندر, اور بڑی بڑی ڈگنیٹریز اور بڑے بڑے ڈیلیگیشنز کو وہ جناب تقریریں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ कभी तालिबान को दिया मौका करने के लिए है? कभी किसी मौलवी को दिया है, किसी सऊदी मुफ्ती को मौका करने के लिए? आपको क्यों देते हैं? क्योंकि आप उनके एजेंडे पे हो, और एजेंडा क्या है? सेकुलरिज्म। तो मुशर्रफ ने भी उस जमाने के अंदर इस चीज को उठाया था, रोशन ख्याली को, जिसका पार्ट ये लोग रहे। तो सबसे बुनियादी काम इन सीक्रेट एजेंसी का ये होता है, फेथ चेंज नहीं करवाएंगे। एक बार भी आपको नहीं कहेंगे इस्लाम छोड़ दो। कोई भी सीक्रेट एजेंसी को ज्वाइन करके या उनसे बात करके देखें, एक बार भी वो नहीं कहेंगे इस्लाम छोड़ो, नेवर एवर। वो कहते हैं इस्लाम पर अमल करना छोड़ो। फर्क पता है? फर्क समझ आया आपको? इस्लाम को नहीं छोड़ो, इस्लाम पर अमल करना छोड़ो। यही पॉइंट मैंने स्टार्ट में रखा था। जिस दिन इस्माइली सिर्फ अल्लाह और रसूल को मानने की बजाय की मानना शुरू कर देंगे ना, इनको फर्क पता चल जाएगा किस जगह पर खड़े हैं। ये स्टार्ट था मेरा पॉइंट। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सब मानते हैं, उनकी मानने वाले बहुत कम हैं। ये फर्क है जो सीक्रेट एजेंसी हमसे नहीं करवाना चाहती। बर अल्लाह आपको जायज कर दे, ये मेरा पॉइंट है। बहुत शुक्रिया, मैंने काफी टाइम
ले लिया। नहीं, बहुत बहुत मुकम्मल कर दिया आपने स्ट्रीम माशाल्लाह। अभी जो रोशनी की आपने बात की, रोशन ख्याली की, तो उसी पर भी मैंने बात की कि आगा खान ने इल्यूमिनेट नाम की अपनी फाउंडेशन बना ली है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था कि क्या मिर्जा कादियानी भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा रहा होगा या उसका एजेंडा था, और कैसा लगेगा वो इल्यूमिनाटी में वो जो मशाल वगैरह उठाते हुए? ये भी बड़ी कॉमेडी सी बात है। आपने कहा कि ये किसी भी मजहब को तब्दील नहीं करवाते। इस्माइलियों का मौकफ भी मैं बता दूं कि ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई इनके मजहब में आए, बल्कि ये प्लुरलिज्म का नारा बोलते हैं कि हर कोई ठीक है और सब कोई ठीक है और सबको पूरा पूरा राइट है। उसके तहत ये लोग जो है वो प्लुरलिज्म को फैला रहे होते हैं। बहुत जबरदस्त बात कर दी आमिर भाई आपने।
जी सॉरी, मैं एक जुमला चुनका आपने पूछा तो मैं रख देता हूँ। ये जो इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब था, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब यानी प्लुरलिज्म, ये सबको साथ लेकर चला जाए, ये कादियानी ने एज पर माय नॉलेज ये उसने क्लेम नहीं किया था। वो तख़सीस का कायल था, यानी आपकी आइडेंटिटी को वो प्रिजर्व करने का कायल था, मगर उसने ये किया था मुसलमान, क्योंकि उसको एजेंडा ये दिया गया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ जगह जगह का फर्क है। ये जो प्लुरलिज्म का जो कायल था, वो जनाब आगा खान की जो फैमिली जहां से कूच करके आई थी ना, हिजरत करके ईरान वाली साइड से, ये बेसिकली उस जगह पर सबसे पहले दिया गया था। आगा खानिज्म वहां से ये इन्फर करके लेके आए थे, इनका खानदान प्लुरलिज्म का नारा, वो नारा था भाइयों का। ये जो भाई फेथ है, जिसको जिसका बानी जो है वो बाप माना जाता है, और उसके बाद बहाउल्लाह ने उसको ज्यादा लेकर चला, क्योंकि बाप को अर्ली एज के अंदर असैसिनेट कर दिया गया था जेल के अंदर, और बहाउल्लाह को टाइम मिला काफी लंबा एज का जिसमें एग्जाइल किया गया उसे। वो बाहर निकला, उसने लिटरेचर भी लिखा अल बयान के नाम से, और इसी तरीके से दूसरी कुछ किताबें लिखी फारसी के अंदर, और उसने क्लेम भी किया कि वो रसूल भी है, बल्कि खुदाई का दावा भी किया। तो बहाउल्लाह जो था और जो भाई फेथ है, इस फेथ का भी यही नारा है प्लुरलिज्म, जो कि इल्यूमिनाटीज का एजेंडा है। ये एजेंडा है कि तौहीद भी एक जगह पर आ जाए, शिर्क भी एक जगह पर आ जाए, हक और बातिल एक जगह पर इकट्ठे हो जाए। और इसको उन्होंने मुख्तलिफ चीजों के साथ खास किया, जिसका एक चीज ये थी कि रियलिटी जो है उसको इतना सब्जेक्टिव कर दिया जाए कि हकीकत हकीकत न रहे। यानी मैं अगर आप मिसाल के तौर पर मैं रोड पर जा रहा हूँ और मुझे सामने नजर आ रहा है कि रेड लाइट है, मुझे इतना मशकूक कर दिया जाए कि मैं कहूँ नहीं जी रेड लाइट नहीं है, मुझे धोखा हो रहा है, ये रेड नहीं है, बात नहीं। हाँ, यानी इस तरह करके हकीकतों को तब्दील कर दिया जाए, हकीकतों के जो ओरिजिनल मीनिंग है उनको चेंज कर दिया जाए, ये चीज बुनियाद बनती है फिर शकूक की। एक और आपको बात बताता हूँ, जिनोस्टिसिज्म की तहरीक, जिसको तहरीक गनूसियत कहा जाता है, जो कि मिडिल एजेस में यूरोप में भी चली, उस तहरीक के अंदर सबसे पहला ये शक डाला गया था कि टर्मिनोलॉजीज को करप्ट किया जाए। इस्माइलियों ने यह काम बखूबी किया, सलात के माना बदल दिए, जकात के माना बदल दिए, सौम के माना बदल दिए, हज के बदल दिए, तौहीद के बदल दिए, सिफात के बदल दिए, नबी के बदल दिए, इमाम के बदल दिए, कलमों के बदल दिए, इबादत के बदल दिए, वजू का बदल दिया, हर किस्म का उन्होंने माना जो है वो बदल कर रख दिया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, किसी भी फेथ को आप करप्ट, देखें स्टेजेस होती हैं किसी इंसान के करप्ट होने के लिए, स्टेजेस हैं। जैसे एक इंसान बीमार होता है ना, तो उसकी स्टेजेस होती हैं, पहले उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं, फिर वो इतना आते हैं कि इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं, फिर इंसान बिस्तर पर लेट जाता है और करते करते जाने फानी से कूच कर जाता है। कोई भी इंसान स्टेजेस होती है, देखें जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां, कैंसर है, ठीक है, HIV है, ये सारी ये स्टेजेस होती हैं। डॉक्टर कहता हो काश आप 2 महीने पहले आ जाते, आपकी जान बच जाए, दैट मीन्स के स्टेजेस हैं। इंसान को कई टाइम पर तो पता भी नहीं चलता मुझे बीमारी है। सो बैक टू द सब्जेक्ट, किसी भी आइडियोलॉजी को क्लैप्स करवाना है या उसको क्राइसिस में लेके आना है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है उसकी टर्मिनोलॉजीज को करप्ट करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए, टर्मिनोलॉजीज को करप्ट करने का मतलब ये होता है कि टर्मिनोलॉजीज के बारे में इस तरह शकूक शुबात पैदा कर दो कि मुसलमानों की जो यूनिटी है ना, यानी किसी भी आइडियोलॉजी को, मैं क्योंकि जेनरिक इस वक्त लेकर चल रहा हूं प्रोसीजर को, तो किसी भी आइडियोलॉजी की जो यूनिटी है, उनकी जो एसेंस है, उनकी जो सोल है, वो चिथड़े चिथड़े हो जाए, उलझ कर रह जाए। और इस तरह वो क्या करेंगे, जब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आ जाएंगी किसी आइडियोलॉजी की टर्म्स के बारे में, तो उनको कंफ्यूज करना और उनको बाहमी तौर पर यानी अंदरूनी तौर पर उनको लड़ाना ये आसान हो जाएगा। अब देखें इस्माइलियों से हमारा जो इख्तलाफ होता है, वो कहते हैं सलात का माना ये नहीं है, वो ज़कात का माना ये नहीं है, सोम का माना ये नहीं है जो आप करते हो, आपको तो गलत बताया गया। फिर वो कभी वासियों पर इल्जाम लगाएंगे, कभी उमवियों पर लगाएंगे, कभी वो रवायतों के ऊपर इनकार करेंगे, कभी वो मौलवियों पर डालेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बेस में टर्मिनोलॉजीज को करप्ट कर दिया गया, उनकी प्योर क्लीन नीट अंडरस्टैंडिंग को जो अल्लाह के रसूल से हमें तवातुर से या साहब की सनद से मिलती थी, उनको करप्ट कर रख दिया। ये समझना बड़ा जरूरी है कि इस्माइलियों का बेस के अंदर हमारे से इख्तलाफ बना क्यों, ये उसकी बुनियाद है। इनके इमामों ने, चाहे वो पीछे आप चले जाएं इस्माइली या चाहे आगा खान की जो लेने जाए, इन्होंने बुनियादी तौर पर ऐसा भरमार लिटरेचर तैयार किया जिस लिटरेचर को इन्होंने, क्योंकि देखें अब लोग पूछ सकते थे, भाई कुरान और सुन्ना में कहां है, क्योंकि मुसलमान थे, तो इन्होंने उस एक्सक्यूज को झाड़ने के लिए कुरान और सुन्ना कहां है, बातनियत की एक नई टीटो पार्टी ईजाद कर ली। नई दुकानदारी के जी बात नहीं आती है आपको, नहीं ये कुरान सुनना, हमने कब कहा है कुरान सुनना है, ना 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 कुरान सुनना से दलील क्यों मांगते हो भाई, हम तो कायल ही बात नहीं आते हैं, ताकि एक नया चूंचू का मरबा तैयार किया जाए, ताकि जब लोग आपसे पूछे भाई कुरान में कहा है सुनना में कहा है, भाई आप मानते हो कुरान सुनना को, हम तो तरीकत को मानते हैं, हम तो बतनीत को मानते हैं, हम तो एक अलग दिशा को मानते हैं, और उसमें जिसका जो मन आए करते चले गए, क्यों, क्योंकि मैदान खुला है, अल्लाह के रसूल ने तो उस बारे में लबकुशाई की नहीं है, तो जब अल्लाह के रसूल ने उस पर लबकुशाई नहीं की तो चाहिए तो यह था कि उसको इस्लाम का हिस्सा ना माना जाता, मगर जब अल्लाह के रसूल ने लबकुशाई ना की और खुद इन्होंने वर्के स्या किए, उसका नतीजा ये निकला कि मन मानी तफसीर ताबीर तावील तशरी आपको मिलने में मिलती है और आपको पता चलता है कि जनाब ये तो कुछ का कुछ हो गया है। इसीलिए इकबाल ने कहा था ज़मन बरसूफी व मुल्ला सलामे के पैगाम खुदा गुफ्तंद मारा वले तावील शादर हैरत अंदाख्त खुदा व जिब्राइल व मुस्तफारा, इन्होंने बातनियत के नाम पर इस्लाम की वो शक्ल पेश की है खुदा व जिब्राइल व मुस्तफारा, वो खुद हैरान हो गए हैं कि भाई ये इस्लाम भेजा था हमने जो इनका तिया पंचा कर दिया है, ये इस्लाम तो हमने दिया नहीं था इनको। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझे इस्लाम सिखा तो अल्लिमून अल्लाह दीनकुम, क्या तुम अल्लाह को दीन सिखाने की कोशिश करते हो, जिसका दीन है उसको दीन सिखाते हो, अल्लाह का दीन था, अतदरून क्या है वो जाहिलिया, क्या तुम जाहिलियत की तलाश में निकलते हो, अल्लाह के दीन को छोड़ते हो, उन चीजों पर पलटते हो। सवाल यह था बुनियादी तौर पर कि इस्माइलियों को समझ क्यों नहीं आ रही, इनके दिमाग क्यों नहीं झंझोड़े जा रहे, इनको इनकी बुनियाद में जो नफ्सियात बन गई है, यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो फिर इस्माइली है ना बेचारे कमजोर हमारे और कुरान और सुन्ना, इनको ये लगता है, हकीकत आपको बताता हूँ, इनको धोखा ये हुआ है, मैंने जैसे कमेंट में मिसाल दी थी कि डालडा घी है, ठीक है ना, गंदा किस्म का घी, उसके ऊपर लेबल लगा दिया ऑर्गेनिक देसी घी, अब वो एक अच्छे से हाइपर स्टोर के अंदर और बड़े वॉलमार्ट के अंदर और जनाब बड़े कारफूर के अंदर और बड़े किसी हाइपर फाइव स्टार स्टोर के अंदर रख दिया जाए, होटल सरीना के अंदर रख दिया जाए, देसी घी के ऊपर ऑर्गेनिक का डालडा घी के ऊपर ऑर्गेनिक देसी घी लगाकर, हाँ जी फाइनेस्ट न्यूजीलैंड फार्म से तैयार करता, ऑस्ट्रेलिया की भैंस का गाय का दूध से तैयार करता देसी घी, और कोई बंदा भी जाएगा तो वो ऊंची दुकान देखेगा, हाँ जी ऊंची दुकान फीका पकवान, ये मिसाल ऐसे नहीं मशहूर हुई, तो उस अब इस्माइली बेचारे को मैं सही बता रहा हूँ, इस्माइली जितने मुझे सुन रहे हैं अपने दिल में इस बात की तस्दीक कर देंगे, इस्माइली इस्माइलियत को इस्लाम ही समझ के फॉलो कर रहा है, उसकी तो अभी तक यही नींद बेदार नहीं हुई उस बच्चे की कि ये हकीकत है या क्या है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना जी, वो ख्वाब के अंदर लॉलीपॉप चूस रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, अपनी पसंद की साइकिल चला रहा है, उसको पता नहीं होता कि पांच मिनट बाद अम्मी ने कहना उसको स्कूल जाना है, उन्हें रट्टा डाल दें अभी पेट में दर्द है, ये अभी नींद से बेदार नहीं हुए, ये उसी ख्वाब में जी रहे हैं, वो सच के लॉलीपॉप होता है अंगूठा, बाद में पता चलता है अंगूठा था जो मुंह में था जिसको लॉलीपॉप समझा हुआ है। हकीकत में इस्माइली बेचारों को मेरे बहनों भाइयों को अभी तक इसी चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि ये दो नंबर घी था जिसके ऊपर ऑर्गेनिक फाइनेस्ट ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड फॉर्म से आपको देसी घी दिया है, उन बेचारों को यही नहीं पता चला, ये है। अब इसकी मिसाल आप ले लें, इस्माइली मुझे सुन रहे होंगे तो अपने दिल पर हाथ रखकर तस्दीक कर देना कैसा है कि नहीं, आप हिंदुओं से पूछें, आप ईसाइयों से पूछें, आप यहूदियों से पूछें जो बायबर्थ उसमें है, वो भी अपने कुरान अपनी किताबों पर और अपनी टीचिंग्स के ऊपर ऐसे ही यकीन रखते हैं, बल्कि इससे भी कट्टर हैं जिस तरह इस्माइली हैं, मगर क्या इस्माइली उनको ठीक समझते हैं, नहीं समझते, क्यों, क्योंकि इस्माइली की मेजोरिटी बाय बर्थ इस्माइली है, वो हिंदू को ठीक समझ नहीं सकती, वो क्रिश्चियनिटी को ठीक समझ नहीं सकती, वो यहूदियत को ठीक समझ नहीं सकती, मगर इस्माइलियो वो भी बाय बर्थ अपने धर्म को उसी तरह ठीक समझते हैं जैसे आप समझते हो। फर्क क्या है, रिसर्च, फर्क क्या है, ये जो आंखों के ऊपर दिमाग के अंदर जो खोपड़ी है इस खोपड़ी को इस्तेमाल करना था, और यही फर्क है इंसान के अंदर और इस चीज के अंदर, तो फर्क ये था इन चीजों को इस्तेमाल करें। देखिए सिंपल, इस्माइली को आपके सिंपल कुरान और सुन्नत पर चीजों को परखना शुरू कर दो। देखो आगा खान, करीम खान, या तो मुझे बता दें आगा जो करीम खान साहब हैं इनकी इंडिविजुअल कोई वैल्यू है, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चले मैं इस्माइलियों के लिए मुझे एकदम दिमाग में आया तो मैं इस्माइली बहनों भाइयों से ये पॉइंट रखने लगा, मेरी बात गौर से सुनकर सर सोचिएगा ईमानदारी से, वो पॉइंट ये है, क्या आप लोग आगा करीम खान साहब की इज्जत एज एन इंडिविजुअल करते हैं या आले रसूल की वजह से करते हैं? सारे कहेंगे विदाउट एनी डिफरेंस, विदाउट अ सिंगल डिफरिंग पॉइंट, इस पर यूनानिमसली इकट्ठे होंगे कि हम सर आगा करीम खान साहब की इज्जत या उनकी रिस्पेक्ट या उनकी जो उनके हाथ पर जो बैत करते हैं इसलिए करते हैं कि वो आले रसूल से हैं, यही आर्ग्यूमेंट हमने सुना। अब मैं आप अगला सवाल रखने लगा हूं, जब सर आगा करीम खान साहब की कुल असासा, उनकी कुल औकात और हैसियत और उनकी वैल्यू और वर्थ ये है कि वो आले रसूल से हैं, तो आले रसूल के तरीके पर वो चलते हैं या नहीं? यानी ये समझ लें आप कि एक बंदा मैदान में आता है, वो कहता है जी मैं आइंस्टाइन का पोता हूं इसलिए मेरी इज्जत करो, और लोग कहेंगे ठीक है भाई आइंस्टाइन के आप पोते हैं, थैंक यू सो मच, आपने क्या इजाद किया है या आपने कौन सी थ्योरीज पेश की हैं या आप कौन सा साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, ओ चाहे शराबी कबाबी, तो आइंस्टाइन के पोते की इज्जत हम, ये मेरा पॉइंट जरा झंझोड़ने वाला सुनिएगा, आइंस्टाइन के या न्यूटन की जनरेशन की और उनके पड़पोतों पड़पोतों उनके बच्चों की इज्जत हम नहीं करते अगर उनकी कोई साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो। दीने इस्लाम इस कदर गिर चुका है इस्माइली बहनों भाइयों की नजर में कि कोई काम शरीयत के मुताबिक नहीं है और फकत तुम आले रसूल कहकर उनकी इज्जत की माला जपते हो। सवाल तो मेरा यह है, जब दुनियादार बंदे की इज्जत उसके अमल की वजह से होती है, मुझे नहीं समझ आता कि खून की बुनियाद के ऊपर आप दीन को क्यों हल्का समझ लेते हो। دین اصل چیز ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے اپنے اہل و عیال کو قریبی کو اکٹھا کر کر کہا تم میں سے کوئی قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہے کہ اے محمد ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، ہم تمہارے چچا تایا تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا کل قیامت کے دن کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا اور جہنم سے بچ نہیں سکتا الا بفضل اللہ، مگر اللہ کے فضل کے ساتھ. کرنے والے نے سوال کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی، کس چیز کا سوال کیا؟ کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور جہنم سے بچ نہیں سکتا سوائے اللہ کے فضل کے. تو کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ بھی اس کیٹیگری میں؟ اللہ کے رسول نے کہا حتی انا ایون می مائی سیلف، اگر اللہ کا کوئی فضل، اللہ کا کوئی کرم نہ ہوا میں نہیں جا سکتا. یہ کون سے امام نکل آئے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حالت تو یہ ہو، آپ کا دعویٰ تو یہ ہو. یہ کون سے مارکیٹ میں امام آ گئے ہیں جو کہتے ہیں ٹینشن نہ لو جی ہم اللہ سے چھڑا کے لے جائیں گے، کل قیامت کے دن ہم سارے معاملات آپ کے گناہ ہم معاف کرتے ہیں. میں نے تین چار مثالیں دے دی ہیں، عقل والوں کے لیے مثال کافی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تعقلون، عقلیں استعمال نہیں کرتے ہو؟ دی اسی لیے تھی نا جی، اندھی پیروی تو نہیں نہ کرنی تھی. بہت شکریہ.
بہت بہترین سوالوں کے ساتھ مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، میرے خیال سے یہ سوال کافی ہیں ایک اسماعیلی کے لیے، چند باتیں رکھنے کے لیے اس کے ذہن میں. اب اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ فردر اب یہی کہوں گی کہ اسماعیلی حضرات آج کا پروگرام دیکھیں اور مزید فردر جو ہے اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. عامر بھائی یاد ہے کبھی آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا سکل اینڈ بونز کا بھی، انڈسٹریز ہیں وہ کس طرح ہمارے اوپر حاوی ہو رہی ہیں، کس طرح کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہیں. اب یہ میوزک ایوارڈز وغیرہ بھی یہ سارے کے سارے برٹشرز کے پلانٹیڈ تھے، جس طرح قادیانی ہو گئے، اسماعیلی ہو گئے، ان کا تعلق بنتا ہے الیومیناتی کے ساتھ اور کوئین الیزابیتھ جو انتقال کر چکی ہیں. جی
سب سے پہلے جو بھی سیکرٹ کانسپریسی کرنے والی جو سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ آرٹ کے اوپر حملہ کرتی ہیں. آرٹ کے اوپر، مثال کے طور پر جب سیکولرزم یورپ کے اندر پھیلانا تھا تو سب سے پہلے آپ کے تھیٹر کے اوپر اٹیک ہوا تھا، آپ کے لٹریچر کے اوپر ہوا تھا، آپ کی پوئٹری پر ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹرانسفارم کرنے کے لیے کمیونیکیشن آپ کے لیے یہ ہے میڈیٹر کا کام کرتے ہیں، انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کا کام کرتے ہیں. آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا ہو یا اسی طریقے سے میوزک انڈسٹری ہو یا یہ نیٹ فلکس ہو یا امیزون پرائم ہو یا اس طرح کی جو ہیں، یہ چیزیں میڈیٹر کا کام کرتی ہیں. ایک انڈیویجول اپنے فون کے اوپر ہر قسم کی انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتا ہے، تو ان کے لیے ضروری یہ آسان ہو گیا، تو انہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر چینج لایا جاتا ہے. ایک بڑی مزے کی مثال ہے کہ رشیا میں جب انقلاب آیا لینن کے بعد اور اسی طریقے سے چائنا والی سائڈ پہ آیا تو وہاں لطیفے بھی اس طرح کے بننا شروع ہو گئے کہ جو بھی سولیزیشن جب کسی آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرتی ہے اور اس کو فالو کرنا شروع کرتی ہے تو ان کی لائف کے اندر لطیفے بھی ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں، لطیفے ہوں، گانے ہوں، شاعری ہو، فلمیں ہوں، وہ اسی ڈگر پر بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہی ہوا، ٹھیک ہے جی. اور جو سکل اینڈ بونز کا آپ نے ذکر کیا، سکل اینڈ بونز باقاعدہ ایک پوری کی پوری یہ سمجھنے ایک آرگنائزیشن ہے جو اس طرح کے گانوں کو پروموٹ کرتی ہے جن گانوں کے اندر ایتھیسٹک جو سائیکالوجی ہے یا ایتھیسٹک جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کیا گیا ہو. مثال کے طور پر اللہ کے وجود یا خالق کے وجود کا انکار ہو اور دنیا کو اس کے بغیر دیکھا جائے، ٹھیک ہے. اچھائی اور برائی کی جنگ کے اندر برائی کو جیتا ہوا دکھایا جائے، جیسے لیڈی گاگا ہے. اب لیڈی گاگا بیسیکلی سکل اینڈ بونز کی ممبر ہے. لیڈی گاگا کے کچھ گانے ہیں جس کے اندر بلیک کرو کو دکھایا گیا ہے، بلیک ڈاگ کو دکھایا گیا ہے جو سیٹن کو یعنی شیطان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. پھر 666 جو ہے جو ڈیوڈ سٹار کا نمبر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نیومرولوجی میں اس نمبر کو یوز کیا جاتا ہے مختلف جگہ کے اندر. پھر ہاتھ سے ٹرائنگل بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے 1 جو فرعون کی ہوا کرتی تھی، فرعون کی اس طرح کی آگ ایجپشن آپ کو دکھائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو مختلف سائنس جو ہیں وہ دیکھنے میں ملتے ہیں. جو بیسیکلی یہ وہ سمبلز ہیں جو سمبلز لا دینیت کو یا لا خدائی کو یا لا ادریت کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان کا سارے کا سارا جو مطمئن نظر ہے، جو گول ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کا ساتھ دلایا جائے کہ خدا نہیں ہے، اس کے بغیر بھی زندگی آپ گزار سکتے ہو. اس بنیاد کے اوپر گانے بنائے جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پر بوہیمیا ہے ایک سنگر پاکستان کا، بیسیکلی پاکستانی اوریجن ہے مگر یو ایس چلا گیا بچپن کے اندر، اور ٹپوری قسم کا وہ ریپ سنگر ہے. اس کا ایک گانا ہے سکل اینڈ بونز کا، وہ بھی سکل اینڈ بونز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستانی اوریجن کا مگر اس کو ہائی جیک کر لیا ہوا ہے سکل اینڈ بونز نے، ٹھیک ہے. اس کا ایک گانا ہے زمانہ جلی، ٹھیک ہے. اب زمانہ جلی جو سانگ ہے یہ بڑا پاپولر ہوا، گاڑیوں میں چل رہا ہے، فونس پہ چل رہا ہے، ڈسکوز میں چل رہا ہے، سب جگہ پر زمانہ جلی. اب زمانہ جلی کے لیرکس سنیں، میں گانے کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیرکس صرف، جیسے لیڈی گاگا کے گانے ہیں ان کے لیرکس سنیں، جس طرح بلیک کرو والا وہ گانا میں بتا رہا ہوں. ان کے گانوں کے لیرکس آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو خود کو لمنتی کہتے ہیں یا سکل اینڈ بونز یا زائنسٹ کی کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن سے جوڑتے ہیں، ان لوگوں کا تعلق کس قسم کی لا دینیت سے ہے. یہ صرف میری گزارش تھی، معذرت چاہتا ہوں آپ نے ذکر کیا تو میں نے اس پر ڈیٹیل بات کرتی. تھینک یو،
بہت شکریہ، بہت شکریہ. آلموسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر قمر سمد بھائی بالکل پروگرام کے اینڈ پہ آئے ہیں، لیکن آپ کے 5 منٹ ریزرو تھے، میں سٹارٹنگ میں چاہ رہی تھی کہ آپ ہمیں جوائن کریں. جی قمر بھائی، السلام علیکم.
السلام علیکم، کیسے ہیں، خیریت ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کی ساری ویڈیو دیکھی، ماشاء اللہ بہت اچھی تھی ویڈیو، آپ نے بہت اچھے سے ہر چیزیں سمجھائیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے حسن بن صبا کا بتایا نا کہ امام نظار کا، یہ امام نظار جو فاطمی دور میں تھے ان سے بیعت لے کے گیا تھا ठीक है ना, इसने अलमौत में जो है वो अपना पूरा महल बनाया जो भी किया, लेकिन जब फातिमी दौर खत्म हुआ तो इमाम निजार का कत्ल हो गया था अलेक्जेंड्रा में, मुस्तैली इनके भाई ने इनको कत्ल कर दिया था, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इनके इमाम अलमौत में पहुंचे। सही ना, अलमौत कब पहुंचे कैसे पहुंचे नहीं पता। देखिए किया बुजुर्ग उम्मीद हसन बिन सबा के बाद जो उनका सेकंड जो दाई बना, सेकंड लॉर्ड ऑफ अलमौत, उसने लमसर का किला फतह किया और हसन बिन सबा ने उसको जानशीन बनाया। अगर इमाम वहां मौजूद होते तो क्यों इमाम को छुपाया, जब लमसर का किला इनके पास था, अलमौत का किला इनके पास था, ये पावर में थे, इनसे सलाउद्दीन अयूबी जैसा शख्स डरता था, तो उनको क्या जरूरत थी इमाम को छुपाने की। मैं यही बात कहता हूँ कि हसन बिन सबा ने अपने दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ गए, उसका कोई भी नहीं था, हसन बिन सबा का एंड में कोई भी नहीं था, तो क्यों उसे इमाम को छुपाया। असल में बात यह है कि कॉपीराइट, सुल्तान मोहम्मद शाह ने सारे इवेंट्स की कॉपीराइट ली, उनको पता था कि हमारी हिस्ट्री मिल नहीं रही है, तो इन्होंने नूर मूवी में दो हसन की कहानी करी कि देखिए गार्डन खाली है किसी को पता नहीं है, तो आपको पता है बीज उगाना है वहाँ फसल उगेगी, तो इन्होंने सारी कॉपीराइट्स ली और इन्होंने जो है बोला कि नहीं एसेंशियल हमारे थे इस तरह से, और अभी ये वही चीज इनको सिखाई जाती है, ठीक है ना। इसी तरह हम यही इनको समझा रहे थे कि इमाम इस्माइल जब मौजूद ही नहीं थे, जब जाफर सादिक, जब शुरू में जाफर सादिक की तहत हुई तो मूसा काजिम इमाम बने, ठीक है ना, तो इमाम इस्माइल तो मौजूद ही नहीं था ना, तो इस तरह से कहना कि नहीं वो मौजूद थे फिर उसमें इसरार करना, वो इनकी सारी जो है ना इस्माइलियों की हरकतें हैं जो गलत हैं कि कॉपीराइट ले लेना चीज़ों का। हालांकि इस्माइलियों का अलमौत से जो कोई रिश्ता मिलता नहीं है, रिश्ता अभी जुड़ा है आखान मन के बाद जो कहते हैं कि हमारे एसेसेंस थे और ये वो, लेकिन ये बात सही है आपकी कि इमाम निज़ार का फॉलोवर था हसन बिन सबा लेकिन अली का खून नहीं था, क्योंकि अल्लाह ज़िक्र सलाम जो थे वो थे किया बुजुर्ग उमीद के बेटे, ठीक है ना, और यही फरद दफ्तरी भी अपनी किताब में यही कहता है कि वो इमाम की हुज्जा थे और उन्होंने ये सब कहा कि ब्रेक योर फास्ट एंड रिजॉइस, और आगे जो आपने कहा कि इनका एक जो आगे इमाम है वो सुनिए उनकी तरफ चला गया था अलमौत ने जब इनको तबाह किया उससे पहले। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इन्होंने सारी कॉपीराइट ली हैं। अब देखें पीर शम्स की भी कॉपीराइट लेते हैं कि पीर शम्स जो कि पंजाब मुल्तान में है उनके नाम पर 900 गुजराती गरबीज हैं, हालांकि पीर शम्स को तो गरबी आती नहीं थी ना जो मुल्तान के पीर हैं, तो सारी गुजराती गरबीज उनके नाम पर डाल दी हैं। तो इस तरह से इन्होंने हर पीरों की और हर जो है ना एसेसेंस की कॉपीराइट ली है। ये लोग जो ये पीर सदरुद्दीन है, पीर हसन कबीरुद्दीन है, इनको भी जो है ना कोई इस्माइलियों से ताल्लुक नहीं, इनकी भी कॉपीराइट लेते हैं, जो में जाकर कॉपीराइट ले लिए कि सब हमारे।
ठीक, बिल्कुल सही कमर समझ भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कॉपीराइट लेने के माहिर हैं, अभी भी इस्लाम का लेबल लगाते हैं और इस्लाम की एक भी चीज नहीं मानते। बड़ी ही बेहतरीन गुफ्तगू रही आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे ऐसे सवाल किए हैं कि अगर आज इस्माइली अपने खुले जहन के साथ उन सवालों पर गौर करे तो मेरे ख्याल से उसे एक पल भी नहीं लगेगा इस्लाम कबूल करने और उसकी सच्चाई को मानने में। लेकिन वही बात है कि फिर इनके दिलों पर, कानों पर मोहर जो है वो ना लगे, इसीलिए हम इस तरह के प्रोग्राम रखते हैं, उनको झंझोड़ने की कोशिश करते हैं। दुआ करते हैं कि हमारी इस मेहनत के बदले अल्लाह पाक, अल्लाह सुभान अल्लाह, इस्माइलियों को जो है वो थोड़ी सी अता फरमा दे, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अनाउंसमेंट भी करते चलो कि बहुत जल्द करीम आगा खान के खोए हुए बेटे पर हमने प्रोग्राम रखा है और अनकरीब हम बताएंगे कि कैसे आगा खान के पहले बेटे, जिनको कभी भी आगा खान ने ओन नहीं किया, आगा खान ने अपना नाम नहीं दिया, कैरल अली इस्माइल वॉन मैक्स की कहानी जो कि पहले पिछले साल मैंने कवर की थी, ये वो बेटा है जो कभी आगा खान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन 12-15 मिलियन इस्माइलियों के रूहानी वालिद और माता सलामत दोनों जो है वो करीम आगा खान खुद को क्लेम करते हैं। इस बच्चे की कहानी इसकी आया ने यानी नैनी ने खुद एक न्यूज में लिखी, बताई कि किस तरह ये उस बच्चे को पाल रही है, इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है। तो ये प्रोग्राम बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है और इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, हमारे जितने भी चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, ईमान यूनियन की टीम को फॉलो कर लीजिए, और आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।